आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने झुके हुए सिरों और हृदयों के साथ। मुझे अचरज होगा कि कितने लोग चाहेंगे कि उन्हें प्रार्थना में स्मरण किया जाए। वे अपने हाथ खड़े करेंगे, कहें प्रभु, ओ प्रभु मुझे स्मरण रखें। यहाँ बहुत सारे निवेदन हैं, रुमाल मेज पर रखे हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम आज शाम को इस छत के तले फिर से जमा हुए हैं, जहाँ पर आप हमसे बहुत बार मिले हैं और अपने प्रेम को हम पर दर्शाया है। जैसा कि हम अपनी नम्रता में होते हुए अपने प्रेम और आपकी महानता को प्रकट करने का यत्न करते हैं, जो कि आपने हमारे लिए किया है। और आज रात्रि प्रभु, हम जरूरतमंद लोगों के समान फिर आए हैं, क्योंकि हम हमेशा तेरी आवश्यकता में रहते हैं। और जब तक हम यहाँ इस पृथ्वी पर हैं, हम जानते हैं यही पुकार रहेगी, क्योंकि हम एक युद्ध में हैं और हम युद्ध गूंज रहा है। और आपने प्रतिज्ञा की है और कहा है कि कैसे शत्रु गरजने वाले सिंह के समान होगा, वो लोगों के बीच में छुटा हुआ है और हम इसे चारों ओर देखते हैं, जैसे कि गरजता हुआ सिंह जो वो खा सकता है खाए, क्योंकि वो जानता है कि उसका समय थोड़ा है। परंतु हमारे पास एक पिता है जो छोटों की चिंता करता है, और हम तेरे पास अपनी विनतियों के लिए भाग कर आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें ग्रहण करेंगे। और ये रुमाल जो यहाँ रखे हैं पिता, इसका अर्थ है रास्ते में कहीं लोग बीमार हैं और वे तुझे पुकार रहे हैं और तेरी आवश्यकता में हैं, और तुझ पर विश्वास कर रहे हैं कि अपने इन रुमालों को यहाँ भेजकर अपने विश्वास का अभ्यास कर रहे हैं। परमेश्वर, इन सब को चंगा होने के लिए ग्रहण करें। प्रभु, हम तेरी शक्तिशाली सामर्थ को देखते हैं। थोड़ी देर पहले उस कमरे में उस लड़के की सिद्ध स्मरण शक्ति को वापस ला दिया जो कि समाप्त हो गई थी। हम तेरी महान सामर्थ को बार बार देखते हैं, बीमारी को हटा रहा है और हृदय के गुप्त भेदों को प्रकट कर रहा है और लोगों को दिखा रहा है और उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कर रहा है। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये किसी भी मनुष्य की पहुंच से परे है, ये किसी भी चीज से परे है कि हम में से कोई जाने कि आप कैसे हर कारण को प्रकट करते हैं और क्या किया और ये कैसे है। ये आप हैं पिता, और हम जानते हैं कि वचन हृदय और विचारों को जांचता और परखता है, इसलिए हम तेरा इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और अब प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि लोग अपने झुके हुए सिरों के साथ इन बातों पर सोच रहे हैं, और ये पवित्र आत्मा है जो उनसे बातें कर रहा है, और उनमें से प्रत्येक के निवेदन को प्रदान करें और उत्तर दें। प्रभु, आज रात्रि जो बचने के योग्य हों उन्हें बचा लें, वे खोए हुए होने दें कि भीतर आएं और बच जाएं। हम उन भीगे हुए कपड़ों के ढेर को देखते हुए धन्यवादित हैं, ये जानते हुए कि कब्र खुली हुई थी और बूढ़े मनुष्य के पाप गाड़ दिए गए, उनमें से बहुतों के। और पिता, मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, और होने दे कि अपने बाकी दिनों में ये नए जीवन की चाल चलें। यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, जो निवेदन आपके हृदय में है उसे उत्तर देने के लिए प्रदान करें। अब मैं विश्वास करता हूं कि बिली ने कहा कि भाई बीलन के पास एक छोटा बालक था, क्या ये ठीक बात थी? क्या मैंने वहां गलती करी कि समर्पण करूं या कुछ और, या एक समर्पण? ठीक है, यदि आप उन्हें अब लाना चाहेंगे तो हम प्रसन्न होंगे। यदि एल्डर सामने आएंगे और उन छोटे छोटे बालकों पर हाथों को रखें इस समर्पण सभा के लिए, हम इसे थोड़े में से करने का यत्न करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये छोटे छोटे जो प्रभु यीशु के पास आना चाहते हैं, अपने छोटे रत्नों को लाना चाहते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं, हम सदा उनके लिए मार्ग बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। मेरी माँ मुझे बताया करती थी, उसे कल पर मत डालो जो आज हो सकता है। ये ठीक बात है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कल क्या होगा, परंतु हम जानते हैं कि कल पर कौन अधिकारी है। ये विशेष भाग है कि हम जानते हैं कि कल किसके अधिकार में है। भाई बीलर और बहन बीलर, प्रभु आपको आशीषित करे। और ये बहन बीलर हैं, निश्चय ही मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ, और मैं पहली बार, मेरा ये विशेष अधिकार है, मेरा विश्वास है, जैसे कि मैं जानता हूँ कि आपसे मिलूं। और ये आपका बालक है, इसका क्या नाम है? कर्लिना रिबेका। कितनी अच्छी छोटी बालिका है, जितनी सुंदर हो सकती है। अब छोटी कार्लीन रिबेका व्हीलर, यह कलीसिया में भाई व्हीलर डीकनों में से एक हैं, और परमेश्वर ने उनकी एकता को इस छोटे वाले से आशीषित किया है। मैं विश्वास करता हूं कि आपके पास, मैं जानता हूं कि शायद दो और लड़कियां हैं, क्या नहीं, तीन और लड़कियां। वे वास्तव में अच्छी महिलाएं हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर रिबाका को उन बाकियों के समान बनाएगा और तब ये आप सबके लिए संतोष होगा, क्या नहीं होगा? ये ठीक बात है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बालक है। मैं नहीं जानता कि वो स्वयं को मुझे गोद में लेने देगी या नहीं। यदि नहीं तो हम उस पर हाथ रखेंगे। क्या आप यहाँ मेरे पास आना चाहेंगी रिबाका? आप मुझे चाहती हैं कि मैं आपको पकड़ूं? ये बहुत अच्छा है, कितनी सुंदर बालिका है। अब हम अपने सिरों को झुकाएं। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, जैसे कि आज रात्रि हम इस डीकन के समक्ष खड़े हैं और वास्तव में ये अच्छा कार्यभार संभाले हुए है। एक डीकन दोष रहित होना चाहिए, एक पत्नी का पति हो, अपने परिवार को अच्छी तरह नियंत्रित, क्योंकि यदि वो ये नहीं जानता कि अपने परिवार को कैसे नियंत्रित करे तो वो परमेश्वर के घर का नियंत्रण कैसे करेगा। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये भाई इन योग्यताओं को पूरा करता है और हम उसमें परमेश्वर का आत्मा पाते हैं। और अब वो अपनी छोटी बालिका को यहाँ समर्पण के लिए लाया है। आपने इसे उनके हाथों में पालन पोषण के लिए दिया है। परमेश्वर, हम तेरे कितने धन्यवादित हैं कि हम कह सकते हैं कि उनके हृदय की इच्छा है कि वो अपनी बाकी बहनों के समान, पिता ये प्रदान करें कि ये ऐसा ही होगा। और होने दे कि बालक जिए और पिता आपकी महान सेवकाई के लिए हो। और अब यीशु मसीह के नाम में हम इस बालक को आपके लिए जीवन सेवकाई के लिए देते हैं। इसे स्वस्थ और मजबूत बनाएं और होने पाए कि ये लंबा जीवन जिए जब तक कि यीशु ना आए, यदि ये संभव हो। और तब पिता हम विश्वास करते हैं कि ये मसीह की चेतावनी में पलेगी और हम इसका जीवन तुझे देते हैं सारे सेवकाई के जीवन के लिए। आमीन। रिबाका, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। भाई और बहन बीलर, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु आपके साथ। आप कैसे हैं? अब यहाँ पर एक और बालिका अपने मुख पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ है। और इसका क्या नाम है? रोंडा रिनी कोर्ट, ठीक है ना? क्या आपका कोई रिश्ता जैसी और उन जैसी कोर्ट्स के साथ है? मैंने सोचा मैं ये नगर में कुछ कोर्ट्स को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि वे बहुत अच्छे हैं। वे मेरे मित्र रहे हैं काफी लंबे समय से। रोंडा रिनी, रोंडा, क्या तुम मेरे पास आओगी? जैसे ही हम तुम्हें प्रभु यीशु को देंगे, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास वापस कर दूंगा। अब ये कितनी सुंदर है। अब हम अपने सिरों को झुकाएं। स्वर्ग के पिता, जैसे कि आपके एल्डर और मैं आज रात्रि एक सहमति और सह स्वरता में आपके सुसमाचार में खड़े हैं, ये माँ इस रोंडा रिनी को आपके पास समर्पण के लिए लाई है। आपने इसे इसकी बाहों में दिया है कि उसकी देखरेख करे, और पहली बात जो वो कर सकती है कि आपको वापस उपहार में दे। जैसे अय्यूब पूर्वज ने कहा, प्रभु ये चीजें देता है। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस बालिका को उस घड़ी तक जब तक आप उसे न उठा लें, इसकी रक्षा करेंगे। और परमेश्वर, ये प्रदान करें कि ये वास्तविक मसीही जीवन जिए और दूसरों के लिए आदर्श बने जैसे जैसे ये बढ़े। इसके घर को आशीषित करें और होने पाए कि ये आपको समर्पित हो सच्चे हृदयों और पूरी सेवा के साथ। और अब परमेश्वर, हम आपको इस रोंडा रिनी कोर्ट को यीशु मसीह के नाम में देते हैं सेवकाई के जीवन के लिए। आमीन। बहुत ही प्यारी है बहन, आपको परमेश्वर आशीष दे। आप कैसे हैं? रॉबर्ट पॉल शेन शामिल, क्या यदि और आप अभी युवा हैं? मैं नहीं सोचता कि आप इस विषय में विवाद उत्पन्न करेंगी। मेरे पर इस प्रकार ना हंसें। यहाँ देखिए, यदि आप किसी पर हंसना चाहते हैं, रॉबर्ट पॉल, कितना सुंदर नाम है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। परमेश्वर, जैसे कि ये युवा लड़की यहाँ आती है, हमारे लिए एक बालिका होगी और ये अपने छोटे लड़के को दे रही है। ओ परमेश्वर, जैसे कि सेवकाई का जीवन आपके लिए, ये उनके मिलन का फल और परिणाम है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके एक प्राचीन के समान, और इस छोटे लड़के पर मैं हाथ रखता हूँ कि इसका जीवन आपको समर्पित हो। प्रभु, यदि कल का दिन हो तो इसे प्रदान करें और ये संदेश को जिसे इसके अभिभावक सुन रहे हैं, इसे ले परमेश्वर ये प्रदान करें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इनके घरों को आशीषित करें और होने दें कि बालक परमेश्वर की चेतावनी में बढ़े और आपका प्यारा चेला बने। हम इसे आपके नाम यीशु मसीह में आपको देते हैं। आमीन। ये एक बहुत अच्छा लड़का है, बस। जी हाँ श्रीमान, इससे अच्छा और कुछ नहीं मांग सकते। क्या आप मांग सकते हैं? संसार में कुछ भी इतना मीठा नहीं हो सकता। ये ठीक बात है, इस छोटे बालक के अलावा। सारी मुस्कुराहट जो मीठी है, ये एक बार मेरी पत्नी ने मेरे कार्य से ईर्ष्या की उन बालकों को संभालने में। वो उन्हें संभालना पसंद करती है और मैं भी करता हूँ, परंतु मैं हमेशा डरता हूँ कि मैं उन्हें तोड़ मरोड़ दूंगा। वे ऐसे ही हैं, आप जानते हैं, सुंदर और कोमल दिखने वाले, परंतु आप जानते हैं वे वास्तव में कुल मिलाकर सब जो हम होंगे। अब मैंने आपको बताया मैं बाहर निकलने वाला था, मेरे पास 35 मिनट है, क्या मुझे जल्दी जल्दी करना है ना? आइए देखें, मैं किसी चीज को गलत नहीं समझना चाहता या कोई चीज गलत नहीं कहना चाहता, परंतु मैं वास्तव में यत्न करने जा रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं हमारे ऊपर सड़क पर जाने के बाद हम उतने क्रियाशील नहीं जितने हम हुआ करते थे, आप समझे। फासला कभी कभी कठिन हो जाता है और दिन की दो या तीन सभाएं, और दर्शनों में कौन सा भाग विशेष है, प्रचार करना मुझे नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं यहाँ पूरे दिन खड़ा रह सकता हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं, परंतु केवल वे दर्शन और जब लोग इन साक्षात्कारों में होते हैं जो कि उन्हें होना चाहिए, समझे, इसलिए वे यहाँ पर हैं। ये कुछ ऐसा है जो केवल हाथ रखने से तय नहीं हो सकता था, इसका आरंभ, इसकी जड़ मालूम होनी चाहिए, इसका क्या कारण है, इसने क्या किया है और तब इससे बाहर निकलने के लिए क्या करें, इसलिए ये लोग यहाँ पर हैं। अब सभा परसों रात्रि में आरंभ होगी या नहीं, मुझे क्षमा करें, ये बुधवार रात्रि शेरपोर्ट लुधियाना में, और यदि आपका कोई मित्र यहाँ आसपास है क्यों, उन्हें बताएं कि यहाँ आए लाइव टबरनिकल। मैं सोचता हूँ जहाँ ये आरंभ होगी, जब तक कि वे सभागार के लिए तैनात कर लें, यदि वे इसे ले सकें जिससे उन्हें अधिक बैठने का स्थान मिल जाता है, परंतु उनके पास ऊपर बालकनी है और एक बड़ा मुख्य हॉल और एक हॉल उसके नीचे, इसलिए मैं ठीक नहीं जानता कि कितने बैठ सकते हैं, परंतु ये यदि ये बहुत खराब हो सकता है कि हमें सभागार दूसरी ओर मिल जाए, जो कि मुझे नहीं मालूम कि उसमें दूसरे वालों में कितने बैठ सकते हैं। वहाँ मेरी सभाएं थी परंतु मुझे स्मरण नहीं। ये वार्षिक बेदारी सभा है, 3 वर्ष पहले मैं वहाँ पर था और हमने प्रभु के नाम से बेदारी सभा आरंभ की और तब से ये कभी नहीं समाप्त हुई, तब से ये निरंतर और निरंतर चल रही है। प्रत्येक दिन लोग आते हैं, बचे हैं, बपतिस्मा लिया और इस प्रकार से प्रभु के संग चल रहे हैं, सेवक और सब सीधे अंदर आ रहे हैं, और हम केवल, जब तक ये निरंतर इस प्रकार चल रही है और मुझे यहाँ ठहरना है, मैं यहाँ हर समय आना चाहता हूँ, और अपने थोड़े से शब्दों से और आगे बढ़ते हैं। अब ये बुधवार को आरंभ होगा और रविवार को समाप्त होगा, क्रिश्चियन बिजनेसमैन के नाश्ते पर, उस होटल का नाम मैं भूल गया, मेरा ध्यान है कि वो कहलाता है, वे आपको बता देंगे जब आप वहाँ पहुँचेंगे। ये बिजनेसमैन का नाश्ता है, आप बिजनेसमैन वालों के लिए यहाँ एक महान समय था। पिछली बार वहाँ पर प्रभु ने एक रब्बी को बचाया उस नगर में से, और ओ मैं नहीं जानता और क्या क्या घटित हुआ। वहाँ प्रभु में एक महान समय था, वाचा के लहू पर प्रचारा, इसलिए हम यही जो यहूदी इस विषय में जानते हैं, ये लहू है और बगैर लहू के बहे कोई छुटकारा नहीं है, आपने देखा। अब आइए सीधे वचन पर चलें और मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि अपनी प्रतिज्ञा को आपसे पूरा करूं। और अब यदि प्रभु ने चाहा बड़े दिन के बाद रविवार, यदि आप अपनी छुट्टियों में हैं और आसपास हैं, ये चतुराई आदि कुछ नहीं है, क्यों आप यदि आप यहीं आसपास हैं तो क्यों ना यहाँ आएं। हम रविवार प्रातः सभा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बड़े दिन के बाद का रविवार, तब कौन सी तारीख होगी, 29वां दिन, बड़े दिन के बाद वही रविवार है, 29वां दिन। अब यदि कुछ होता है ताकि हम कुछ जो हम नहीं करेंगे और यहाँ नहीं है, हो सके भविष्य के विषय में हम नहीं जानते, आप जानते हैं, परंतु यदि कुछ होता है, आप जो नगर के बाहर रहते हैं, जो आते हैं यहाँ मैक्सी के लोगों के समान, मैंने भाई अंग्रेन को प्रभु महान गाते हुए सुनना चाहा और मैं क्या आज रात्रि वो यहाँ है, और इसलिए और मेरे पास सदा बहुत सी बातें होती हैं, मैं उन सबों को नहीं कर सकता, सब नहीं कर सकता। लोगों, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब आइए थोड़ा सा वचन निकालें, थोड़ा वचन पढ़ने के लिए, यदि मेरे वचन असफल हो जाएं, ये नहीं होंगे, और तब परमेश्वर आपको यहाँ रुकने के लिए आशीष देगा, केवल उसके वचन को सुनने के कारण। विश्वास सुनने से होता है, सुनना परमेश्वर के वचन से, क्या ये ठीक है? अब जैसा कि मैं सोच रहा था, जबकि आप संत यूहन्ना का 6वां अध्याय निकाल रहे हैं, 60वें पद से आरंभ करके और 71वें पद तक पढ़ेंगे, संत यूहन्ना 6:60। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले खिड़की से बाहर देख रहा था, मैं सोच रहा था और अस्त होते हुए सूरज को देख रहा था और देख रहा था कि कैसे सारी प्रकृति के पास व्यवस्था है, और जब शरद ऋतु आती है, प्रकृति की वो व्यवस्था स्वयं से वृक्ष के जीवन रस को जड़ में पहुंचा देती है, ये गड़ जाता है। जैसे कि अय्यूब ने कहा, ओ तू मुझे कब्र में छिपा देगा ताकि तू मुझे गुप्त स्थान में तब तक रखे जब तक तेरा क्रोध रहे, और अब यही है, यदि तू मुझे छिपा लेगा। देखिए, उसने प्रकृति को देखा, वृक्ष को, जीवन जड़ों में चला जाता है, भाई वे और वहाँ तब तक रहता है जब तक क्रोध ठंडा ना हो जाए और तब मुझे पुकार और मुझे समय पर तैयार कर। समझे, प्रकृति का एक विधान है, प्रकृति का एक विधान है, इसे समझने का कोई मार्ग नहीं। ये प्रकृति का विधान है और तब आत्मा का एक विधान है, वो भी है, उसे समझने का कोई मार्ग नहीं है। आज दोपहर पश्चात में एक जोड़े से बात कर रहा था कि आप किसी भी चीज को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते। मनुष्य जाति का विनाश नहीं हो सकता, उन्हें तोड़ा जा सकता है परंतु विनाश नहीं। और किसी ने कहा कि एक कागज के टुकड़े को लेकर जलाना क्या ये नष्ट हो जाता है? नहीं श्रीमान, ये तो केवल रसायन टूट जाते हैं। आग की गर्मी, ये वापस गैस में बदल जाता है जो वो आरंभ में था। आप नष्ट नहीं कर सकते। और यदि संसार अधिक समय तक बना रहे तो वही गैसें और रसायन जो उस कागज में थे वापस आकर फिर से कागज का टुकड़ा हो जाएंगे। बिल्कुल यही है, आप बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते। सही बात है। तब परमेश्वर, यदि हर चीज का फिर से पुनरुत्थान है और विनाश नहीं, तो धर्मी का भी पुनरुत्थान है। जी हाँ, और हमें वापस आना है। इसके लिए केवल यही है, इसे करने का कोई मार्ग नहीं है, कोई मतलब नहीं। यदि आप जल गए, यदि आप डूब गए, जो भी हो, वे विनाश नहीं कर सकते। केवल स्मरण रखें कि आपका हर भाग यहाँ था जब परमेश्वर संसार को अस्तित्व में लाने के लिए बोला। उसने आपके शरीर को ठीक यहीं पर रखा और इसे सिवाय परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं ले सकता। ये वापस सब फिर से उसी के हाथ में है। देखा, और वही एक है, वही सृष्टि करता वो था जिसने प्रतिज्ञा की। तो हम निश्चित हैं कि अनंत जीवन है और हमारे हृदय में निश्चित है कि अब हमारे पास अनंत जीवन है, अनंत जीवन जो मर नहीं सकता, अब हमारे अंदर है। संत यूहन्ना 6, अब हम संत यूहन्ना के 6वें अध्याय से आरंभ करेंगे और 60वें पद से आरंभ करेंगे। इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा कि ये बात नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। वही उसने क्या कहा, मैं ही सत्य और जीवन हूँ। वे आत्मा है, वे जीवन है। परंतु तुम में से ऐसे कितने हैं जो विश्वास नहीं करते? क्योंकि यीशु तो पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और मुझे कौन पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। कठिन बात, देखिए, वो इसे नहीं ले सका। तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया है और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन मसीह जीते परमेश्वर का पुत्र तू ही है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुम बारहों को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदाद के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन बारहों में से था उसे पकड़वाने को था। अब यदि आज रात्रि मैं इस विषय को कहूं और अपने पूरे यत्न से उस आधे घंटे में मैं इस पर बात करना चाहता हूं, तीन प्रकार के विश्वासी। और मैंने अक्सर एक बात कही है और मैंने सोचा इस दोपहर पश्चात मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस पर एक बार प्रचार करूंगा। मैंने ये सोचा है, पहला विश्वासी है, बनावटी विश्वासी और अविश्वासी। अब ये बहुत ही और आप एक विषय, परंतु जितनी निश्चितता के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं, ये झुंड सदा एक साथ एकत्र होता है। जहाँ कहीं भी लोग जमा होते हैं, हम ये झुंड पाते हैं और हमेशा इन्हें पाया और संभवतः प्रभु के आगमन तक ये रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम आज रात्रि जब मैं इन तीन झुंडों के विषय में बोलता हूँ, अपने आप को तस्वीर में देखें कि हम कौन से झुंड में हैं। अब इस पर रखें, मैं यहाँ हो सकता है मैं बोल रहा हूँ, ये आराधनालय आज रात्रि फिर भर गया चारों ओर दीवारों और गलियारों, परंतु मैं समस्त संसार से भी बोल रहा हूँ। संसार के विभिन्न भागों में ये टेप सेवकाई के द्वारा चारों ओर घुमाए जाएंगे। अब मैं तीन विभिन्न प्रकार के विश्वासियों पर बोलना चाहता हूँ। अब स्मरण रखें, विश्वासी, मेरा विषय विश्वासी लोग हैं। उनमें से एक सच्चा विश्वासी और अगला बनावटी विश्वासी और उसके बाद अविश्वासी, समझे। अब पहला झुंड जिसके विषय में हम बात करना चाहते हैं विश्वासी है, क्योंकि मैं सोचता हूँ उसे पहले होना चाहिए, क्योंकि वही है जो सच में विश्वास करता है। अब चेलों के समान जैसे यहाँ विश्वास किया, हम इस पढ़े हुए वचन को उदाहरण के रूप में उपयोग करेंगे। अब पहले विश्वासी, वास्तविक विश्वासी, और विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का वचन जो कि मसीह है। देखा विश्वासियों को, क्या आपने इस महान वक्तव्य पर ध्यान दिया जो ये विश्वासी ने दिया। अब विश्वासी को तेज तरार इस संसार के अनुसार तेज नहीं होना चाहिए, उसे शिक्षित व्यक्ति जैसा ये लोग प्रयत्न करते हैं नहीं होता है। कहते हैं कि आपको होना चाहिए परंतु आपके पास नहीं है। आप ये मनुष्य जिसने ये वक्तव्य दिया, बाइबल स्वयं कहती है कि वो अज्ञानी और अनाड़ी दोनों था। उसे कभी भी सुयोग्य व्यक्ति नहीं समझा गया। यशायाह 35 कहता है कि एक राजमार्ग और एक मार्ग होगा और वो कहलाएगा पवित्रताई का मार्ग, अशुद्ध उस पर ना चलेगा। मैं दोपहर पश्चात एक डीकन से बातें कर रहा था, जैसे कि हम पुल की आर पार की चौड़ाई के विषय में बातें कर रहे थे, और ये नया वाला। मैंने कहा आज जल समूहों के ऊपर बहुत से पुल हैं, आज नदियों की शाखाएं, और मैंने कहा कि एक महान पुल है जो पृथ्वी से महिमा तक है, जो कि राजा का राजमार्ग कहलाता है। अशुद्ध जन उस पर नहीं चलेगा, ये ठीक बात है। ये मार्ग हमारे प्रभु मसीह के द्वारा बनाया गया है। वो पुल जो पृथ्वी से दूसरे देश तक और अशुद्ध इस पर से होकर न जाएगा। पतरस, ये अशिक्षित व्यक्ति वहाँ पास खड़ा है, जब उसने पूर्णतः प्रमाणित वचन को, जो उस समय का था जिसे परमेश्वर ने उस दिन के लिए प्रतिज्ञा से कहा कि एक तुम्हारे मध्य में से एक भविष्यद्वक्ता उठेगा, और शमौन ने इसका कठिनता से विश्वास किया क्योंकि वहाँ बहुत से नकली होंगे, परंतु जब उसने वास्तविक देखा, उस युग का भेदपूर्ण वचन और ठीक से उसे सुनकर प्रमाणित किया, वो निश्चय ही सहमत हो गया था कि वो कौन था। और वही था जिसने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं, जब उससे पूछा गया, जब भीड़ विश्वासी, अविश्वासी और बनावटी विश्वासी में बट रही थी, वे सारे तीनों वहाँ उसी एक लोगों की संगति में खड़े थे। विश्वासी, बनावटी विश्वासी और अविश्वासी यहाँ ठीक इस अध्याय में मिलते हैं। और क्योंकि जिस प्रकार से यीशु ने ये शब्द बोले, इसने उसकी सभा को विभाजित कर दिया, परंतु ये होना ही चाहिए। जब तक वो बीमारों को चंगा करता रहा, वो महान पुरुष था, परंतु जब वो शिक्षा और भविष्यवाणी पर आया, इसी ने भूसे को गेहूं के दाने से अलग कर दिया, समझे। भूसा गेहूं के चारों ओर लिपटा रहता है, ये गेहूं नहीं होता, इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कोई जीवन नहीं है, ये भूसा है, ये गेहूं के साथ नहीं टिक सकता, ये गेहूं के साथ बारिश नहीं होगा। और इसलिए ये हो गया, केवल बाल के विषय में जो हम बातें कर रहे हैं, बाल का हृदय गेहूं है। अब ध्यान दें, पत्रस निश्चित था कि वो मसीह था। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि बाकी सब ने क्या कहा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा कि याजक ने क्या कहा, शमौन पत्रस को कोई मतलब नहीं कि आराधनालय से क्या कहा गया। वो अपने आप में निश्चित था यीशु ने उसे एक स्थान पर कहा जहां उसने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? और किसी ने कहा तू भविष्यवक्ता है, और किसी ने कहा तू किसी पुराने भविष्यवक्ताओं में से एक जी उठा है, और तू मूसा या एलिया या कोई और है। उसने कहा मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम क्या सोचते हो? और पतरस ने कहा तू मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र। उसने कहा धन्य है तू योना के पुत्र, शमौन योना के पुत्र, क्योंकि मांस और लहू ने ये तुझ पर प्रकट नहीं किया। तूने इसे किताबों से नहीं सीखा या धार्मिक मत या कैटेगिज्म से नहीं, तू मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पर प्रकट किया है। वहाँ एक वास्तविक विश्वासी है, आत्मिक प्रकाशन वचन का, समझे? तू शमौन है और इस पत्थर पर तेरा प्रकाशन पर कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी भी प्रबल ना होंगे, समझे? कोई आश्चर्य नहीं कि शमौन ने कहा हम किसके पास जाएं? यीशु घूमा और बोला क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और उन्होंने कहा प्रभु किसके पास, हम कहाँ जाएं? क्योंकि केवल तेरे ही पास जीवन के वचन हैं, केवल तू ही एक है। उसके पास केवल जीवन के वचन ही नहीं थे, वो जीवन का वचन था। देखा, वो जीवन का वचन था। और शमौन ने पूर्णतः भली प्रकार से इसे पहचाना, और जब उसने इसे पहचाना यही था जिसने इसे थामे रखा, क्योंकि उस पर प्रकट हो गया था कि वही वो जीवित वचन है। अब ये वास्तविक विश्वासी है, जब पवित्र आत्मा न कि किसी के द्वारा उसकाया हुआ, न कि किसी और चीज से, परंतु जब पवित्र आत्मा ने स्वयं वचन ने आप पर प्रकट कर दिया, तो आपने वचन को स्पष्ट रूप से प्रमाणित होते हुए देखा। तब परमेश्वर का आत्मा आता है और उस युग में समा जाता है, उस युग के वचन के लिए, और उसे प्रकट कर देता है। कैसे कोई व्यक्ति लूथर पर विश्वास नहीं करता यदि वो ये जानता? लूथर सुधारक था, मनुष्य वाला आत्मा इस सुधार के लिए आगे आया। इसी प्रकार वेस्ली, उन्हें इसका विश्वास करना ही था। देखिए, कलीसियाई युग के लिए संदेश था, ठीक यही जो वो हुआ, यही घटित हुआ था, आपको इसका विश्वास करना था। और अब हम यहाँ लुदेकिया युग में हैं, और हमें लुदेशियन युग में सिखाया गया कि मसीह को उसकी कलीसिया से बाहर निकाल दिया गया है, और यहाँ तक कि वह द्वार पे खटखटा रहा था, भीतर वापस आने का यत्न कर रहा था। इसलिए जब हम ये होते हुए देखते हैं, हम जानते हैं कि हम कौन से युग में जीवित हैं, और तब हम जगत के इतिहास के अंत में हैं। अब पुस्तक समाप्त हो रही है, अंतिम पंक्ति किसी दिन लिख दी जाएगी और ये समय समाप्त हो जाएगा, तब समय और ना होगा। और एक बड़ा नाटक तैयार किया जा रहा है, और बहुत सारे दूत आकाश में खड़े हुए देख रहे हैं। आप जानते हैं कि क्या नाटक है, पात्र तैयार हैं, आप उन्हें अभिनय करते देख सकते हैं, आप बुराई को कार्य करते देखते हैं, आप नाटक के खलनायक खेलते हुए देख सकते हैं कि वे कैसे चालाकी से धोखा देने के लिए दृश्य पर आता है, परंतु आप कलीसिया को उठाए जाने की तैयारी के लिए देख सकते हैं। ये एक बड़ा दृश्य है, आप परमेश्वर की उपस्थिति प्रमाणित और वो महान नाटक जो कि पहले से यहाँ बाइबल में बताया गया था स्वयं होते हुए देख सकते हैं। जीने के लिए क्या ही समय है, बहुत ही महिमामय समय। सारे युगों के मनुष्य इस समय को देखना चाहते थे, पुराने युग के भविष्यवक्ता इस घड़ी को देखना चाहते थे, परंतु उन्हें सौभाग्य नहीं मिला। अब एक विश्वासी था क्योंकि उसने ये देख लिया, उसने इसका विश्वास कर लिया। हमने पूर्णतः स्वीकार कर लिया है कि तू क्रिस्त मसीह है इस दिन के लिए, और हम ये विश्वास करते हैं। देखिए, ये वास्तविक विश्वासी है। आइए हम जल्दी से कुछ और विश्वासियों को लें इससे पहले कि हम अगले चरित्र पर जाएं। आइए नूह भविष्यवक्ता को लें। जब वो हो सकता है कि वो किसान रहा हो सकता है वो उन दिनों में किसान था, परंतु जब उन दिनों के ठट्टा करने वाले और धर्मज्ञानी कलीसिया को एक हल्की असफलता मिली, और परमेश्वर नूह से बोला और नूह को बताया कि उसे एक नाव बनानी थी। नूह ने कभी भी परमेश्वर से विवाद नहीं किया, उसने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का वचन था, और एकदम से चीजों को तैयार करने के लिए कार्य पर चला गया। ये वास्तविक विश्वासी है। इस विषय में विवाद ना करें, जब आप पूर्णतः सहमत हो गए हैं, बस यही है। जैसे कि कोई और कोई विश्वास, किसी तरह से विश्वास सुनने से आता है। यदि आप यहाँ खड़े हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं डॉक्टर आपके साथ क्या गड़बड़ी बताता है। जो मनुष्य ने आपके मामले को जांचा है और संभवतः जानता हो कि वो क्या बात कर रहा है, जहाँ तक उसके औजार और ज्ञान उसे जानने देंगे, परंतु वो कहता है अब कुछ नहीं बचा, केवल मृत्यु। परंतु आप प्रार्थना करते हैं और सामने भविष्य में खड़े होकर आप जंगी पुरुष या महिला को वहाँ खड़े हुए देख सकते हैं। जी हाँ, यही बात है और बस यही है। और वे सीधे वहाँ जा रहे हैं जितना निश्चित कुछ हो सकता है, क्योंकि आप इसका विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने ये बोला है, आप जानते हैं कि ये ऐसा है। जैसे कि साधारण महिला कैंसर को खांस रही थी, देखा, उसके मस्तिष्क में कोई संदेह नहीं था कि होने जा रहा था। कैंसर मर गया था और ये खुलकर और अलग चला गया, समझे? यही है, आप ये विश्वास करते हैं। जैसे कि थोड़े समय पहले वो पिता अपने छोटे लड़के को लाया और वो यहाँ कहीं भवन में है। छोटा लड़का गिर गया था और अपनी स्मरण शक्ति खो बैठा, वो कुछ भी स्मरण नहीं कर सक रहा था। प्रार्थना के कुछ क्षणों के पश्चात मैंने उसका नाम उससे पूछा और उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी आयु कितनी है, और वो वहाँ उतनी ही साधारण अवस्था में था जितने का कोई लड़का हो सकता है। उन्होंने विश्वास किया, और जब परमेश्वर कुछ कहता है तो ये उसी प्रकार होना चाहिए। और नूह ने परमेश्वर का विश्वास किया और नूह को एक विश्वासी करके जाना गया। डैनियल, जब कलीसिया वहाँ बाबुल में बंधुआई में थी, डैनियल ने विश्वास किया। इससे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने कितना कहा हम उद्घोषणा करेंगे, वे किसी और ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे सिवाय उस मूरत की जो वहाँ है, इस पवित्र मनुष्य की, या वो जो भी हो सकता है। डैनियल ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया, उसने परमेश्वर को सुना था क्योंकि वो भविष्यवक्ता था और वचन उसके पास आया। और जब मंदिर का समर्पण किया गया तो ये कहा गया था, यदि कोई भी मनुष्य किसी भी देश में संकट में हो और इस पवित्र स्थान की ओर देखे और प्रार्थना करे तो स्वर्ग से उसकी सुनना। और डैनियल ने परमेश्वर का विश्वास किया, वो वास्तविक विश्वासी था और यहाँ तक कि सिंह उसे नहीं खा सके। ये ठीक बात है, देखिए, वो विश्वासी था, उसके पास कुछ वास्तविक और मूर्त था, वो एक विश्वासी था। दाऊद एक विश्वासी, एक छोटा बेकार लड़का। डैनियल ने आधुनिक कलीसिया में स्थान नहीं लिया, ना ही नूह ने आधुनिक कलीसिया में स्थान लिया, बिल्कुल नहीं। वे जो कुछ परमेश्वर ने सत्य कहा उसमें विश्वासी थे। इससे कोई मतलब नहीं कि आधुनिक संसार ने क्या कहा, उन्होंने जो सत्य परमेश्वर ने कहा उसका विश्वास किया। यही मूल विश्वासी होते हैं। वैसे ही जैसे पतरस ने किया और चेलों ने, उन्होंने विश्वास किया कि उसके पास जीवन का वचन था, और जीवन का वचन था। मैं आज उसी बात का विश्वास करता हूँ, और कोई दूसरी बात जो इसके विरोध में है वो कुछ नहीं, वो मृत्यु है। केवल यही जीवन का वचन है और वो मसीह वचन है। अब दाऊद, गुलाबी लड़का, पहली बात, संभवतः वो अपने भाइयों की गोदी में उठाया गया क्योंकि वो छोटा था, वो इतना बड़ा नहीं था कि हथियार उठा सकता, वो युद्ध पर नहीं जा सकता था, और वो थोड़ा दुबला पतला था, और तब भी वो वहाँ एक विश्वासी के समान पहुँचा। जैसा कि वो वहाँ जंगल में कुछ दर्जन भेड़ों को देखा करता था जो उसके पिता ने उसे देखभाल के लिए जंगल में एक गोफन के साथ दी थी, जहाँ सिंह, भालू और भेड़िए आदि आदि थे। दाऊद ने हरी हरी चराइयों की ओर देखना आरंभ किया और जानता था कि छांव में ले जाकर बिठाना और सूर्य की गर्मी का क्या अर्थ होता है। जानता था कि ठंडे पानी को पीने का क्या अर्थ होता है। जैसे कि उसने कहा, जैसे हिरनी सोते के लिए तरसती है, मेरा प्राण ओ परमेश्वर तेरे लिए प्यासा है, समझे? वो रोया था, प्रार्थना की, और एक दिन संकट खड़ा हो गया और एक सिंह ने उसकी एक भेड़ को पकड़ लिया और ले गया। उसने सोचा, वो परमेश्वर जिसने मुझे सिंह से उत्तम बनाया है, समझे? और उसने गोफन ली और सिंह को गिरा दिया गोफन में छोटे पत्थर से। अब यदि किसी ने कभी सिंह को देखा हो, उन अफ्रीकन सिंहों में से एक बड़ा रोएदार गर्दन, वे जो फिलिस्तीन में होते थे और एशिया में, वे जानते होंगे कि वे क्या होते हैं। और एक बड़ी 300 मैग्नम बंदूक उसे नहीं गिराएगी, और उसने उसे एक पत्थर से गिरा दिया। और जब सिंह उसके लिए उठा, उसने उसे डाढ़ी से पकड़कर मार डाला। यही कारण था, इसलिए वो जान गया कि वो किस विषय में बात कर रहा है। उसके पास अनुभव था, उसने परमेश्वर को उसके वचन पर परखा, और वो गोलियत से नहीं डरा क्योंकि वो खतरा रहित था, वो बिल्कुल भी विश्वासी नहीं था। जब गोलियत निकल कर आया और उसे अपने देवताओं के नाम से कोसा, गोलियत उससे कई गुना बड़ा था, एक बड़ा व्यक्ति, उसकी उंगलियां 14 इंच की थीं। अब उंगलियां इतनी लंबी होंगी, देखिए, 14 इंच की उंगलियां, एक योद्धा, और संभवतः कीलों का पहनावा उसने पहन रखा था, संभवतः 300 पाउंड का या अधिक, देखिए, ये उससे पहन रखा था, एक लोहे का टोप और एक बड़ा, संभवतः धातु का, 1.5 इंच मोटा। इस प्रकार एक बड़ा दानव जुलाहे की डंडी के साथ आगे बढ़ रहा था, जो कि लगभग 20 फुट की होगी, जैसे कि दावा किया गया है। उसके पास 20 फीट लंबा भाला उसके हाथ में था। अब कोई कैसे एक इस प्रकार का मनुष्य, जो केवल खड़ा होकर दर्जन भर लोगों को उठा सकता है, और उन्हें फेंक सकता है जैसे ही वे आते हैं। क्या ही विरोध है। और वो वहाँ खड़ा हुआ स्वयं डींगे और शेख ही मर रहा था, जब लग रहा था जैसे कोई विचित्र वहाँ था। देखा आपने, उसने कहा कोई खून खराबा ना करे, कहा कोई व्यक्ति आकर मुझसे लड़े और तब यदि मैं जीतूं तो तुम हमारी सेवा करोगे और यदि तुम जीतो तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे। देखिए, जब शैतान सोचता है कि वो आपके लिए विचित्र है, यही तब वो अपनी डींगे मारना पसंद करता है। परंतु वो गलत व्यक्ति से मिला, वो राष्ट्र के छोटे से व्यक्ति से मिला, छोटे झुके हुए कंधे, लाली उस पर से झलकती थी। उसने कहा, क्या तुम्हारा अर्थ मुझे बताने का ये है कि जीवित परमेश्वर की सेना वहाँ खड़ी रहेगी और एक खतना रहित फिलिस्तीनी जीवित परमेश्वर की सेना की निंदा करे? क्यों? उसे इस पर झटका लगा। क्यों? क्यों? वो एक विश्वासी था, दूसरे बनावटी विश्वासी थे, समझे? देखिए, वो मूल वास्तविक विश्वासी था। उसने कहा, यदि तुम मुझसे डरे हुए हो तो मैं जाकर उसे लड़ूंगा, समझे? इस प्रकार से छोटे से लड़के के लिए क्या ही चुनौती थी। और इसलिए वो एक विश्वासी था और उसने ठीक वही किया जो वो जानता था कि परमेश्वर करेगा। जब उस खतना रहित फिलिस्तीनी ने उसे अपने देवताओं के नाम से कोसा, उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि एक छोटा बच्चा इस प्रकार से निकल कर आया है? क्यों? उसने कहा, मैं भाले की नोक से तुझे उठा दूंगा और तुझे वहाँ पेड़ पर टंगा दूंगा और चिड़िया तेरा मांस खा लेंगी। ओ, कितना भयानक वो था। दाऊद ने कहा, तू मुझसे तलवार और भाले हथियारों के साथ मिलने आया है, तू मुझसे फिलिस्तीनी के नाम से मिलता है, परंतु मैं तुझसे बिना तलवार या भाले हथियार से मिलता हूँ, परंतु मैं तुझसे इसराइल के परमेश्वर प्रभु के नाम से मिलता हूँ। यहाँ आप ये विश्वासी हैं, ये उसके किलेबंदी, ये उसकी ढाल, ये उसकी सुरक्षा। आमीन। यही कलीसिया की सुरक्षा होनी चाहिए। कोई भी विश्वासी, यही उसकी रक्षा है। कोई मतलब नहीं क्या घटित होता है, संसार क्या कहता है, कुछ भी। आपकी सुरक्षा इसराइल का प्रभु परमेश्वर है, यही बात है। यीशु मसीह का नाम शक्तिशाली मीनार है, धर्मी उसमें भागते और सुरक्षित। हमारी सुरक्षा यीशु मसीह है। ध्यान दें, जब ये घटित हुआ, हम जानते हैं कि क्या घटित हुआ। दाऊद को कहीं और नहीं मारना था, परंतु वो छोटा सा स्थान जब उसने अपने चेहरे का नकाब गिरा लिया, एक ही स्थान मारने के लिए था, ठीक यहाँ माथे पर। और इससे पहले कि वो उस दानव से किसी दूरी पर आता, परमेश्वर ने मारने के स्थान का इशारा दिया और उसने दानव को घात किया, समझे? परमेश्वर ने ये किया। अब हम ध्यान देते हैं कि वो विश्वासी था। अब एक और विश्वासी अब्राहम था और वो कसदियों के नगर उर का था और उसे कुछ करने को बुलाया गया और कुछ ऐसी बात का विश्वास किया जो पूर्णतः शारीरिक रूप से असंभव था। परंतु वो अविश्वासी से परमेश्वर की प्रतिज्ञा से लड़खड़ाया नहीं, रोमियो 4 कहता है, परंतु मजबूत और परमेश्वर की महिमा की। जब अब्राहम 75 वर्ष आयु का था और उसकी पत्नी 65 वर्ष आयु में, और जब से वे युवा थे तब से एक साथ रह रहे थे, वो रिश्ते में उसकी बहन लगती थी, एक युवक और एक युवती, और उन्होंने एक साथ बगैर किसी बालक के जीवन बिताया। और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, स्वयं को अविश्वासियों से अलग रख। परमेश्वर सदा अलगाव से बुलाता है, स्वयं को अविश्वासियों से अलग कर और मेरे साथ साथ चल, और मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाया है। मैं ये पहले ही कर चुका हूँ। और अब्राहम ने इसका विश्वास किया, ये विश्वासी है। उसने ये प्रश्न कभी नहीं किया कि प्रभु आप इसे कैसे करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा कि वो ये करेगा और ये तय हो गया। जब पहला महीना बीत गया और सारा अब तक वो रजनोनिवृत्ति पार कर चुकी थी, कुछ अंतर पड़ा, कुछ भी नहीं, परंतु अब्राहम ने फिर भी इसका विश्वास किया। 25 वर्षों के बाद अब भी कोई अंतर नहीं पड़ा, परंतु अब्राहम ने फिर भी इसका विश्वास किया। ये एक विश्वासी है, ये कोई बनावटी विश्वासी नहीं, ये एक विश्वासी है। 25 वर्षों पश्चात इब्राहिम अपनी पहली वाली स्थिति से अब अधिक मजबूत था। उसने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता ठहरा, क्योंकि वो ये वास्तविक विश्वासी है। अब कुछ समय पश्चात मैं आपको खोजने दूंगा कि आप किस वर्ग में हैं। अब अब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर की प्रतिज्ञा से डगमगाया नहीं। असंभावनाएं, 75 वर्ष का व्यक्ति 65 वर्ष की पत्नी के साथ क्या होगा यदि वे डॉक्टर के पास गए होते और कहते, हम अस्पताल में अपनी व्यवस्था करवाना चाहते हैं, हमारे बालक होने वाला है। और तब 25 वर्षों बाद कहा, डॉक्टर आपने अब तक अपना अस्पताल खोल रखा है, समझे? समझे, ये आपसे विचित्र कार्य करवाएगा। आपके निर्णय अजीब हैं संसार के लिए। परंतु ये एक विश्वासी है। इससे कोई मतलब नहीं कि ये कितना अजीब लगता है। बाइबल ने कहा वो पूर्णतः सहमत था कि परमेश्वर इस योग्य है, जो उसने कहा है वो करेगा। आज दोपहर बाद हर विश्वासी में ये उपलब्धि होनी चाहिए। परमेश्वर हर वचन को जो उसने कहा वो करेगा, इसे पूरा करने में योग्य है। मैं चिंता नहीं करता कि नामधारी कलीसियाएं क्या कहती हैं और ये बातें कि आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए और ये सब मस्तिष्क को पढ़ना है और ये सब भाग्य बताना है। वे क्या कहते हैं इसका मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। मैं अब भी विश्वास करता हूँ यदि वो बंदूक लक्ष्य के साथ शून्यंक है तो वो इस लक्ष्य पर मार करेगी। और मैं विश्वास करता हूँ यदि एक विश्वासी परमेश्वर के वचन के साथ शून्यंक है तो वो उसी चीज पर मार करेगा। यदि परमेश्वर के वचन ने कभी प्रतिज्ञा की है तो वो फिर से करेगा। मैं इससे पूर्णतः सहमत हूँ। ये कि जब हम देखते हैं कि हम इस युग में हैं, जब इसे यहाँ होना चाहिए, इसे यहाँ होना चाहिए, तो इन बातों को घटित होना चाहिए। यही कारण है मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब दुल्हन को बाहर बुलाया गया और चुना गया और जीवन की पुस्तक में व्यवस्थित किया गया तो स्वर्ग में से एक आवाज आएगी, तो दुल्हन में पवित्र आत्मा का एक ऐसा बपतिस्मा होगा जो उसे पृथ्वी पर से अनुग्रह में उठा लेगा। परमेश्वर ने इसकी प्रतिज्ञा की है। चिंता नहीं कितना विज्ञान और कितने ज्योतिषियों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और वो सब कुछ और वे कितने लाखों मील दूर वे देख सकते हैं, इस विषय में कोई चिंता नहीं करता। वहाँ एक स्वर्ग है और वहाँ यथार्थ में यीशु मसीह है जो शारीरिक रूप में अपनी कलीसिया को अपने लिए लेने आएगा। इससे कोई मतलब नहीं कि कथा कितनी पुरानी लगती है, ये अब भी सत्य है। परमेश्वर ने ऐसा कहा है। एक विश्वासी यही विश्वास करता है। परमेश्वर ने कहा मैं प्रभु तेरे सारे रोगों को चंगा करता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं नहीं बदलता। आमीन। और परमेश्वर वचन है और यदि परमेश्वर नहीं बदलता तो फिर वचन कैसे बदल जाएगा। देखो मैं परमेश्वर हूँ, मैं बदलता नहीं, वचन ये कहता है। परमेश्वर ने ये स्वयं कहा है और यदि वो बदल नहीं सकता तो वो वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, ना बदलने वाला वचन। और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में वासा किया। आमीन। जी हाँ श्रीमान, परमेश्वर ने पिछले सारे समयों में शरीरों को उठाया, मूसा और हिजकेल और यर्मिया और यशाया और एलिया का और सारे जहाँ उसका वचन अस्थिर रूप में आया, परंतु पूरा वचन इस मनुष्य यीशु मसीह में प्रकट हुआ जो कि परमेश्वर था, परमेश्वर परिपूर्णता में, परमेश्वर देहधारी, वहाँ वो शरीर बना। मैं विश्वास करता हूँ प्रत्येक वचन। अय्यूब दूसरा विश्वासी। कभी कभी विश्वासी की परीक्षा ली जाती है, कभी कभी नहीं, हर बार, क्योंकि हर पुत्र जो परमेश्वर के पास आता है उसकी ताड़ना, परीक्षा, प्रशिक्षित बालक होना चाहिए। स्मरण रखें, परीक्षाएं, धूल भरे मार्ग, पीड़ा का गर्म सूर्य, परंतु आपके हृदय की निष्ठा उस चीज को पीटती है जब तक वो ढलने के लिए तैयार ना हो जाए। परमेश्वर के बालक उसके वचन पर सही बनाए जाते हैं क्योंकि वे जीवित प्रमाण है और परमेश्वर का वचन उनके द्वारा जीवित रहता है। समझे? परीक्षाएं आपको झटका देने का आती हैं कि आपको नीचे रख दें और देखें आप कहां खड़े होंगे। वे परखे गए। प्रत्येक पुत्र जो परमेश्वर के पास आता है परखा जाता है। अय्यूब कठिनाइयों और परीक्षा में से होकर निकला। उसके बालक ले लिए गए, हर वस्तु ले ली गई। कलीसिया के सदस्य आए, उस पर गुप्त पापी होने का दोष लगाया गया और उसके विरोध में हर बात कहने का यत्न किया गया, परंतु तब भी वो किसी की नहीं सुनेगा। वो जान गया था कि उसने परमेश्वर की मांगों को पूरा किया है। वो जान गया था इस बात की आवश्यकता नहीं थी कि शैतान उसे बहकाने का यत्न करे। वो जानता था कि वो प्रेत था और जब तक शैतान उसे ये विश्वास करवा सकता था कि उसके ये रोग उसका परमेश्वर कर रहा है, उसने अय्यूब को कोड़े लगाए। परंतु जब अय्यूब को ये प्रकाशन मिला कि ये परमेश्वर नहीं था, वो केवल अपनी परीक्षाओं में से होकर निकल रहा था कि उसे कुछ बनाया जाए, ये परमेश्वर नहीं कर रहा था, ये शैतान कर रहा था। और ठीक ऐसा ही आज है, वो आपको बताने का यत्न करेगा कि ये मुसीबतें और ये चीजें आपका परमेश्वर आपके ऊपर डालने का यत्न कर रहा है। ये ऐसा नहीं है श्रीमान, नहीं श्रीमान, ये शैतान कर रहा है और परमेश्वर ये अनुमति दे रहा है कि आपको मजबूत बनाए, आपको दिखाने के लिए यदि आप इस पृथ्वी से बंधे हुए हैं संसार की चिंताओं के द्वारा या आपका धन स्वर्ग में है, क्योंकि जहां आपका धन है तो आप भी वही हैं। ये ठीक बात है। आपका हृदय वही है जहां आपका धन है। अय्यूब परखा गया तो भी उसने कहा, मैं जानता हूं कि मेरा बचाने वाला जीवित है, अंत के दिन में मैं पृथ्वी पर खड़ा होऊंगा, यद्यपि मेरी खाल के कीड़े मेरे शरीर को नष्ट कर दें। क्या आपने ध्यान दिया, उसके खाल के कीड़े उसी में थे। आपके खाल के कीड़े आप में हैं। आप सील बंद आवरण में बंद हैं, इसमें कोई हवा नहीं है या जो भी है, परंतु खाल के कीड़े पहले ही वहाँ हैं। वे ठीक आपके अंदर हैं और वे कभी भी अपने कर्तव्य पे बुलाए जाने के लिए तैयार हैं। दुश्मन रखें, कैसर वो सड़क पर सड़ गया, खाल के कीड़ों ने उसे खा लिया, सड़क में ही उसकी अपनी खाल के कीड़े, वे ठीक वहाँ तैयार। यद्यपि मेरे खाल के कीड़े इस देह को नष्ट करते हैं, तो भी मैं अपनी देह में होकर परमेश्वर को देखूंगा। आमीन। आप इसे नष्ट नहीं कर सकते, यद्यपि खाल के कीड़े खा जाएं, ये फिर भी वापस आएंगे। जिसको मैं स्वयं देखूंगा, मेरी आंखें देखेंगी और किसी की नहीं। उसने ये कहा, अय्यूब ने, क्यों? वो एक विश्वासी था। संकट में वो एक विश्वासी था, पीड़ाओं में वो विश्वासी था, वो एक वास्तविक विश्वासी था। यूसुफ एक और विश्वासी, वो जो उसमें था वो कुछ नहीं कर सकता था, वो एक भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर ने उसे एक भविष्यद्वक्ता बनाया। वो अपने भाइयों से भिन्न नहीं होना चाहता था, परंतु वो भिन्न था, परमेश्वर ने उसे वही बनाया जो वो था। उसका स्थान कोई और नहीं ले सकता था। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने छोटे हैं, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। आप कहती हैं, मैं तो केवल घरेलू महिला हूँ, आपका स्थान कोई नहीं ले सकता। परमेश्वर अपनी महान अर्थव्यवस्था में है, उसने इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि परमेश्वर की देह व्यवस्थित है, यहाँ तक कि कोई आपका स्थान नहीं ले सकता। मैं चाहे कितना भी बिली ग्राहम का स्थान लेना चाहूँ, हम में से कोई भी सेवक, परंतु हम इसे नहीं कर सकते। परंतु स्मरण रखें कि बिली हमारा स्थान नहीं ले सकता। देखिए, हम सब का एक स्थान है, हम में से कुछ सुसमाचार फैलाने वाले, कुछ भविष्यद्वक्ता, कुछ शिक्षक, कुछ रखवाले, हम जो भी हैं, कुछ घरेलू महिलाएं, कुछ मिस्त्री, कुछ किसान, जो कुछ भी हो, परमेश्वर ने आपको आपके स्थान में व्यवस्थित कर रखा है। देखा, यूसुफ भविष्यद्वक्ता था, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो सपनों का अर्थ बता सकता था, वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो दर्शन देख सकता था। ध्यान दें, वो कितना सच्चा था, इससे कोई मतलब नहीं यदि उसे अपने भाइयों की संगति की कीमत चुकानी पड़ी। वो सच्चा था क्योंकि उसने उन सपनों का विश्वास किया, उसने विश्वास किया कि वो सपने जो उसने देखा कि वे उसके सामने सर झुकाएंगे, वे पूले थे, ये घटित हुआ क्योंकि उसने इसका विश्वास किया। वो वास्तविक विश्वासी था। कैसे? मेरे पास 5 मिनट और 10 पन्ने हैं। अब ध्यान दें, वचनों के यहाँ लिखे हुए हैं, वो महिला नतेल, वो एक विश्वासी था, क्या ये ठीक है? तेल जब उसने देखा कि क्या घटित हुआ और इससे उसमें कार्य हुआ कि यीशु ने उसे बताया कि वो कौन था और कहा कि वो एक सच्चा इजरायली है और उसमें कोई बुराई नहीं, और बताया कि एक दिन पहले वो कहां पर था, पेड़ के नीचे प्रार्थना कर रहा था। उसने उसे देखा जब फिलिपुस ने उसे बुलाया, वो विश्वासी था। वहां पर बहुत से खड़े हुए थे, बोले ये शैतान की आत्मा है, शैतान दिव्य चंगाई करता है, ये कि पुराना शैतान आज भी मरा नहीं। उन्होंने विश्वास किया कि शैतान दिव्य चंगाई करता है। यीशु ने कहा, यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो उसका राज्य बट गया और उसका राज्य बना नहीं रह सकता। समझे? शैतान ने उसमें कहा वो ये नहीं कर सकता, इसलिए शैतान शैतान को नहीं निकाल। इसलिए नतेल विश्वासी था, जब उसने वचन को देहधारी होकर प्रकट प्रमाणित होते देखा, वो एक विश्वासी था। उसने कहा, तू रब्बी है, तू मसीह है, तू इज़राइल का राजा है। उसने इसका विश्वास किया। जब उस स्त्री ने जो कुएं पर थी ये देखा, उसने इसका विश्वास किया। वो एक विश्वासिनी है। जब अंधे बर्तिमाई ने, जब एक स्त्री वहाँ पर आई, हर कोई चिल्ला रहा था, उनमें से कुछ कह रहे थे वहाँ सब के सब, मैंने सुना है तू मृतक को जीवित करता है, यहाँ उनसे कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, आकर उन्हें जीवित कर, हम तुझे ये करते हुए देख। देखिए, वही शैतान जिसने कहा था यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं। उसी ने उसके मुख के चारों ओर कपड़ा लपेटा और उसके सर पर मारा और कहा, छड़ी दूसरे को पकड़ा दी, कहा यदि अब तू बता दे कि तुझे किसने मारा तो हम तेरा विश्वास कर लेंगे। वे सिपाही उसका उपहास उड़ा रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि उसका भाग्य खराब हो, परंतु स्मरण रखें, परमेश्वर सदा दृश्य पर रहता है। समझे? वो वहाँ किसी भी समय के लिए तैयार रहता है। अब यीशु ने कहा, मैं अपने पिता से कह सकता हूँ और वो तुरंत स्वर्गदूतों की 12 सेनाएं मेरे पास भेज देगा। ओ, एक स्वर्गदूत क्या कर देगा? परंतु आप देखिए, उसके मात्र आज्ञा पर 12 सेनाओं को भेज सकता है। परंतु उसे एक कार्य करना था, उसके पास करने के लिए कुछ था जिसमें से होकर उसे निकलना था। आपके पास करने के लिए कुछ है, परमेश्वर के पास आपके करने के लिए कुछ है। आपके हृदय में कोई पीड़ा हो सकती है और कुछ परेशानी, आपकी कुछ निराशाएं हो सकती हैं, परंतु क्या हम उन्हें टालने के लिए प्रार्थना करें? नहीं प्रभु, मुझे उनमें से होकर निकलने दें। वो जो कुछ भी है मुझे उनसे बचने मत दें। यदि वो मेरे लिए हैं तो मुझे केवल अनुग्रह दें कि मैं उनमें से होकर निकल जाऊं। बस अब ध्यान दें, अंधा बर्तिमाई, वो जानता था कि उन्होंने ये बताया था कि ये गलील का भविष्यद्वक्ता है, ये दाऊद का पुत्र है। हम ये विश्वास करते हैं, कुछ विश्वासियों ने उसे ये बताया होगा। हम विश्वासी ये जानते हैं कि वो दाऊद का पुत्र है। वो जानता था यदि वो था तो वो वचन था, और यदि वो जानता था कि वो वचन है तो वो जानता था कि वो हृदय के विचारों को परख सकेगा। इसलिए वो चिल्लाया, तू दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और विश्वासी ये सब चिल्ला रहे थे, कलीसिया के सदस्य, ये अंधे बर्तिमाई को बिल्कुल भी रोक ना सके। उसने कहा, ओ यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। संभवतः वो उसे नहीं सुन सकता था, परंतु वो जानता था कि वो चिल्ला रहा था, और वो रुका और घूमा। वहाँ एक विश्वासी था, उसने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, आमीन। उसने ये बात लहू बहने वाली स्त्री से भी कही थी, वही बात, तेरा विश्वास, क्योंकि उसने अपने हृदय में कहा, यदि मैं उसका वस्त्र छू सकूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए, वो विश्वासी थी। यही वो बात है जिसने विलियम डाउस को, जो उस दिन वहाँ बैठा हुआ था पूर्णतः रुके हुए हृदय के साथ और एक दिल का दौरा, एक मनुष्य 91 वर्ष का, उसे बचा लिया। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, क्यों? वो एक विश्वासी था। रेवरेंड टॉम किड यहाँ है, यहाँ तक कि वो अपने लगभग, मैं समझता हूँ लगभग अब 90 वर्ष के इसके आसपास हैं, और जब वे 79 वर्ष के थे वे उसे चिकित्सालय प्रोस्टेट ग्रंथि के कैंसर के साथ ले गए। डॉक्टर कहता है कुछ नहीं हो सकता, परंतु उस प्रातः जब हम भीतर आए और उस बूढ़े को उसके कंधे पर शॉल डाले वहाँ बैठे हुए अपनी छड़ी को टकटक करते देखा, वो लगभग अपने आपे से बाहर था। उसने वहाँ बैठी हुई बूढ़ी स्त्री से कहा, उसने उसे पुकारा, अपने सदस्यों के समान वर्षों से जानता था, कहा, आप बर्फ के समान सफेद दिखाई पड़ रही हैं। उसके मस्तिष्क के विचार से परे, तब भी जब परमेश्वर की सामर्थ कमरे में आ गई, आज रात्रि वो जीवित है। ये 4 वर्ष पहले की बात है। एक मनुष्य लगभग 80 वर्ष आयु का, और वो यहाँ आज रात्रि कैंसर से बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा बैठा है। देखिए, बनावटी विश्वासी नहीं, एक विश्वासी, यही विश्वास है। उसने परमेश्वर को उसके वचन पर लिया, बिल्कुल ऐसे ही अंधा जैसे बर्तिमाई था, अंधा, परंतु तो भी वो जानता था यदि वो यीशु मसीह को आकर्षित कर सके तो जो वो चाहता है पा लेगा। स्त्री जान गई, यदि वो उसका वस्त्र छू ले तो वो जो चाहती है प्राप्त कर लेगी, जो वो चाहती है वो उसे प्राप्त कर लेगी। टॉम जान गया कि उसके पास विश्वास था, यदि उसके लिए प्रार्थना करूं तो वो जो चाहता है वो प्राप्त कर लेगा। क्या ये वही विश्वास नहीं जो मार्था ने कहा, अब भी प्रभु जो भी तू परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर तेरे लिए करेगा। मेरा भाई वहाँ कब्र में 4 दिन से मृत पड़ा है, परंतु तू केवल परमेश्वर से कह और परमेश्वर तेरे लिए कर देगा। कहा, तेरा भाई फिर से जीवित हो जाएगा। और उसने कहा, हाँ प्रभु, अंत के दिन पुनरुत्थान में वो जी उठेगा। वो एक अच्छा लड़का था। उसने कहा, परंतु वो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हाँ प्रभु, मैं भी यही विश्वास करती हूँ। तुमने उसे कहाँ गाड़ा है? यही है, हो गया। जी हाँ श्रीमान, दक्षिण की रानी उस अविश्वासियों की पीढ़ी में से आई, ये ठीक बात है, और वहाँ खड़ी होकर और विश्वास किया, और जो भी उसने परमेश्वर का देखा, बाइबल ने कहा वो उस पीढ़ी के साथ अंतिम दिन खड़ी होगी और उसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो संसार के दूसरे छोर से सुलेमान की बुद्धि को सुनने आई। मूसा विश्वासी था, यद्यपि उसने बुद्धि से यत्न किया, उसने हर योजना से यत्न किया, परंतु उसने काम ना किया। उसने इसराइल को बाहर निकालने का यत्न किया, ये जानते हुए कि उसे ये करने के लिए बुलाया गया है। उसने हिसाब किताब वाले मार्ग से यत्न किया, उसने फौजी ढंग से यत्न किया, उसने शिक्षा के ढंग से यत्न किया, उसने हर प्रकार से यत्न किया, परंतु इससे काम नहीं चलेगा। परंतु फिर उसने परमेश्वर के ढंग से लिया। क्या हुआ? वहाँ एक दिन झाड़ी पर आग लगी थी, वो नहीं छोड़ेगी। वहाँ से वचन उससे बोला और कहा, मैं हूँ, मैं था नहीं, मैं होऊंगा नहीं, मैं हूँ। वो अब भी मैं हूँ है, वो वचन है, अनंत सदा का वचन। मूसा ने संदेह नहीं किया, कठिनाइयाँ उसके विरुद्ध, हर प्रकृति उसके विरुद्ध, हर चीज उसके विरोध में, परंतु एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी उसके हाथ में है, और वो गया और समस्त रात को मृत सागर में डुबा दिया और इसराइल को प्रतिज्ञा देश में ले आया। क्यों? उसने परमेश्वर का विश्वास किया, ठीक, उसके पास ये विश्वासी है। हम रुक सकते हैं, अब आधे घंटे विश्वासियों पर रुका रहा, अभी 2 वर्ग और हैं, हमें इन्हें जल्दी जल्दी लेंगे क्योंकि वे इतने विशेष नहीं है, जो भी हैं, नहीं। अब दूसरे पर अविश्वासी आता है, अब अगला अविश्वासी पर बोलते हैं। अब अविश्वासी क्या करता है? हम विश्वासी को देखते हैं क्या? वचन को स्वीकार करना। हर जाति, हर पीढ़ी, नूह से लेकर ऊपर तक, उनके चरित्रों को लेकर हम बेदारी के 6 महीने इन पर ले सकते हैं। वे विश्वास करते हैं। विश्वासी प्रश्न नहीं पूछता, विश्वासी इसका विश्वास करता है। चिंता नहीं कैसा प्रतीत होता है या इस विषय में कौन क्या कहता है या ये कितना असंभव लगता है। विश्वासी इसका विश्वास करता है। किसका विश्वास करता है? वचन का। धार्मिक मत का नहीं, वचन का। नामधारी का नहीं, वचन का। ये नहीं कि कोई क्या कहता है, परंतु वचन क्या कहता है। अब इसमें रखें, ये विश्वासी है। विश्वासी प्रश्न नहीं करता। विश्वासी ये नहीं कहता ये कैसे हो सकता है, यदि मैं इसकी व्याख्या कर सकता होता। ये अविश्वासी है। देखा, ये विश्वासी है। इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या है। यदि ये वचन है तो ये वचन है, ये सत्य है, ये विश्वासी है। अब अविश्वासी, अब हम क्या देखते हैं? हम अविश्वासी को लेते हैं। हम पाते हैं जब तक कि उनकी पीठ थपथपाई जाती है और चेले कहलाते हैं, वे ठीक रहते हैं। जब तक सब ठीक चलता रहता है, वे ठीक थे। परंतु जब ये भविष्यद्वक्ता, जिसका उन्होंने भविष्यद्वक्ता होने का विश्वास किया और जाना कि ये बीमारों को चंगा कर सकता है और आदि आदि, तो उसने क्या किया? जब वास्तविक सत्य और झिड़की आई उसके विरोध में जो वे विश्वास करते थे, तो वे उस वचन को नहीं ले सके। वे आश्चर्य कर्म को ले सकते हैं और उन्हें उन्होंने किया। वे गए और प्रेतों को निकाला, वचन का प्रचार किया, तब भी अविश्वासी रहे। मत्ती 10, उसने उन्हें दो दो करके भेजा, 70, और उन्होंने प्रेतों को निकाला इतना कि यीशु आनंदित हुआ और कहा, मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की नाई गिरते देखा। देखिए, वे प्रेतों को निकालते हैं, यहूदा ठीक उनके साथ था। यहाँ अविश्वासी आता है, परंतु जैसे ही यीशु ने ये कहना आरंभ किया कि वो कुछ था, क्योंकि वो था पुनरुत्थान, वो जीवन था, तब तुम क्या कहोगे यदि तुम मनुष्य के पुत्र को वहाँ चढ़ते देखोगे जहाँ से वो आया है। अब ये व्यक्ति ये कहने का यत्न करता है कि वो स्वर्ग से आया है, ये तो हमारे लिए सहने से अधिक है, हम इसका विश्वास नहीं कर सकते। उसने कहा, ये क्या है? ये शरीर जिसकी तुम बातें करते हो, इससे कोई लाभ नहीं। ये आत्मा है जो जीवित करता है। आप यहीं पर हैं। आत्मा वचन को जीवित करता है। ये आत्मा है, धर्मसार नहीं। वो आत्मा, पवित्र आत्मा का आपके लिए वचन को जीवित करता है और जीवित हो जाता है। और आप वहाँ हैं, आप इसे देखते हैं विश्वास के द्वारा। आप इसे देखते हैं, आप जानते हैं कि ये इसी प्रकार से है, क्योंकि वचन ने ऐसा कहा है और आत्मा वचन को आपके लिए जीवित करता है। यहाँ आप हैं। अब उसने कहा, क्या होगा? और जैसे ही हमने ये किया, हम अविश्वासियों को पाते हैं। जब आप उनसे कुछ कहते हैं तो वो सहमत नहीं होते, वे आपको छोड़कर चले जाते हैं। बस मैं नहीं मानूंगा। ओ, ये इतना बढ़ता जा रहा है और आज इस संसार में आरंभ करके कुछ कहिए, वे जमा होते हैं। मैंने सभाओं में ध्यान दिया, वे एक बड़ी भीड़ में जमा होते हैं और आप खड़े होकर कुछ कहना आरंभ करते हैं, और जब तक, और वो वहाँ बैठेगा और देखता रहेगा, प्रतीक्षा करता रहेगा। तब जैसे ही आप कहते हैं, अब यीशु मसीह ने स्वयं को मसीह प्रमाणित किया, क्योंकि वो एक भविष्यद्वक्ता था, वो बर्तन पूरा भर गया और अलग चला गया, कोई और वे चले गए। ये क्या है? ऐ विश्वासी, आप कहते हैं आप इसे बना रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो जो बाइबल कहती है। वे अविश्वासी थे, वे चले गए। यद्यपि वे चेले थे, परंतु उसके विरुद्ध था जो वे, उन्होंने कहा, ये इस प्रकार की बातों को कौन विश्वास कर सकता है। देखा, वे फरीसी और सदूकी जो निकल आए और सदस्य बनकर उसके साथ हो लिए थे। क्योंकि देखिए, जब अलौकिक को दर्शाया जाता है तो ये तीन विभिन्न प्रकारों को उत्पन्न करता है। यही इसने मिस्र में किया। इसने अविश्वासियों को उत्पन्न किया, विश्वासियों को, और बनावटी विश्वासी को। इसने ये तीन वर्ग बनाए। यहाँ लिखा हुआ है, जब तक हम आज रात्रि इन्हें देख नहीं लेते कि ये कैसे है, सब जगह आप पाते हैं कि आप उन तीनों को देखते हैं। देखिए, आप सदा इस प्रकार पाएंगे। अब ध्यान दें, ये 70 चले गए, क्योंकि जो वे ठीक समझते थे उससे ये मेल नहीं खाता था। हमारे पास और कोई विचार नहीं आ रहा, यही जो उसने कहा। आप अपने ही विचारों का इनकार कर रहे हैं, आप केवल वही करते हैं जो वो कहता है। ये वास्तव में मान लेना है। कन्फेशन यानी मान लेना का अर्थ वही बातें कहें। यदि मैं वही बातें कहूं जो निश्चित बात घटित हुई है, मैं वही कहता हूं जो घटित हुई है, यही वो वास्तव में मान लेना है। और वो हमारी स्वीकृति का महायाजक है, समझे? वही बात कह रहे हैं जो परमेश्वर ने कही। देखिए, इससे ये ठीक हो जाता है, क्योंकि आप परमेश्वर के उन्हीं वचनों को दोहरा रहे हैं। अब ध्यान दें, 70 चले गए। उन्होंने क्या किया? वे केवल इसलिए चले गए क्योंकि वे सहमत नहीं थे। उनकी बुद्धि, उनका उनकी कलीसिया से संबंध बहुत अधिक था। उनके लिए ये सोचने से बहुत अधिक था कि ये मनुष्य यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो कि बाकी सब लोगों ने विश्वास किया कि ये अवैध रूप से उत्पन्न हुआ था। इसे स्वयं को परमेश्वर कहने का कोई अधिकार नहीं है, वो केवल एक मनुष्य है। कहा कि हम तुझे भले कामों के लिए पथरवा नहीं करते जो तू करता है, परंतु हम तुझे इसलिए पथरवा करते हैं कि तू मनुष्य होकर स्वयं को परमेश्वर बनाता है। और वचन ने कहा कि वो परमेश्वर था, उसका नाम परामर्शदाता, शांति का राजकुमार, सामर्थी परमेश्वर, अनंत पिता कहलाएगा। उनका वही पवित्र वचन जो उन्होंने पढ़ा, और उसी दिन जब वे भजन संहिता 22 गा रहे थे, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरी सारी हड्डियाँ वे मुझे घूर रहे हैं, एक भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी, ठीक वही भजन जो वो मंदिर में दोहरा रहे थे, वहाँ लटका हुआ बलिदान, उन्हीं शब्दों को जो दाऊद ने 800 वर्ष पहले कहे पुकारा था, और उसे देखने के लिए वे बिल्कुल अंधे थे। और आज उसी परमेश्वर ने जो इस युग के लिए बोला, दृश्य में ठीक वही कर रहा है जो उसने कहा कि वो करेगा, और वे इसे देखने के लिए अंधे हैं। ये अविश्वासी है, वे बाहर निकल गए, ओह मैंने इस तरह की बात कभी नहीं सुनी, मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना। आपने क्या सुना, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बाइबल ने कहा वो यहाँ होगा और ये उसका वचन है। नहीं उन्होंने कभी सुना था, परंतु ये वहाँ वैसा ही था, समझे, ये ठीक बात है। वे अविश्वासी थे जैसे कि हवा थी, वो बहुत धार्मिक थी, जी हाँ वास्तव में इसलिए, परंतु उसने सत्य के वचन का विश्वास नहीं किया, और उसे स्वयं अपना धर्म बनाना था, इसलिए उसने कुछ अंजीर के पत्तों से बनाया, परंतु उससे काम नहीं चलेगा। धर्म का अर्थ है ढांकना। केन ने वही बात की, केन इसका विश्वास नहीं कर सका, क्या ये ठीक है, उसने कहा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर निष्कलंक है, परमेश्वर सुंदर है, इसलिए मैं कुछ सुंदर फूल लूंगा और मैं फूल लूंगा और मैं शानदार बड़ी वेदी बनाऊंगा और उसको अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करूंगा, मैं उसके सन्मुख उठूंगा और झुकूंगा और उस परमेश्वर की आराधना करूंगा और मैं वेदी पर फूलों को चढ़ाऊंगा, क्योंकि आप समझते हो कि मेरे पिता और माता ने कुछ सेब खाए थे, कुछ फल अदन की वाटिका में, और इसी बात ने मुझे अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और इसलिए यही है मैं वापस जाऊंगा क्योंकि मैं इसे सुंदर बनाऊंगा। परमेश्वर मेरे बड़े आराधनालय को तिरस्कृत नहीं करेगा, क्यों, आराधनालय मेरे पास बहुत बड़ा होगा, मैं इसे इतना सुंदर बनाऊंगा कि यहाँ तक कि वो परमेश्वर का ध्यान आकर्षित कर लेगा। शैतान वो है जो सुंदरता में वास करता है, वचन ठीक यही कहता है। यही कारण है कभी कभी एक सुंदर महिला शैतान का फंदा बनती है, यदि वो उसे थामे रह सके तो वो राष्ट्र के मदरेलाओं की अपेक्षा अधिक लोगों को नरक में डाल देगा, ये ठीक बात है, समझे। या सुंदर, कोई महान सुंदर व्यक्ति जो कि अपनी मनुष्यत्व की सत्यता में स्थिर नहीं रह सकेगा, देखिए फिर से वो उन महिलाओं को शैतान के पास पहुंचा सकता है और उन्हें नरक में भेज देगा। जी श्रीमान, ध्यान दें, शैतान सुंदरता में वास करता है। उसने आरंभ में क्या करने का यत्न किया, मिकाइल के राज से अधिक सुंदर राज्य बनाता है, उत्तर की ओर चला गया और 2/3 स्वर्गदूतों को अपने संग लिया। देखिए वो किसका पुत्र था, उसमें उसका स्वभाव था, शैतान का पुत्र निश्चय वो था। अब वो वेदी बनाता है और घुटने टिकाकर और उसने आराधना की, उसने हर चीज की, केन ने, जो हाबिल ने की, परंतु हाबिल जानता था कि ये वो था, वो लहू था जिसने उसे बाहर निकाला, वो जानता था कि ये वो था, ये यौन था, लहू, इसलिए उसने छोटा सा पशु लिया और चट्टान पर बलिदान किया और उसकी गर्दन काटी। ध्यान दें, केन, वो परमेश्वर ने उसे बताया, उसने कहा कि तू क्यों नहीं अपने भाई के समान आराधना करता है, और तू ठीक करेगा, यदि तू ऐसा करेगा तो अच्छा करेगा, परंतु नहीं, वो इस विषय में कुछ जानता था। देखिए, उसने मूल को अस्वीकार कर दिया, एक प्रमाणित वचन, यदि वे आज उसके बालक नहीं हैं, समझे। अब देखिए, परमेश्वर ने प्रमाणित किया, बाइबल ने कहा इब्रानियों का 4th अध्याय या 11th अध्याय, परमेश्वर अपने वरदान को प्रमाणित कर रहा है कि वो धर्मी है। परमेश्वर ने अपने बलिदान को प्रमाणित किया, परमेश्वर ने सिद्ध किया कि ये वो था जो उसने स्वीकार किया, ये उसका वचन था, उसकी योजना, और केन को बताया कि वही कर और जीवित रहे। परंतु क्या आप सोचते हैं कि वो ये करेगा, अपने विचार को छोड़ेगा, नहीं श्रीमान, वो एक अविश्वासी था और वो सीधा बाहर चला गया, ये ठीक बात है। केन ने वही किया, निमरोद ने वही किया, अविश्वासी, उसने विश्वास नहीं किया, बेलशेजर ने वही किया, यद्यपि नबूकदनेस्सर, यद्यपि डेनियल उसके पास देवता समान था, उसे बेलशेजर कहा जो कि उसके ईश्वर का नाम था, डेनियल को परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य करते देखा, और तब वो जान गया कि बेलशेजर ने विश्वास किया, यानी वो डेनियल ईश्वर था, इसलिए उसने उसकी प्रतिमा बनाई और वहाँ बाहर स्थापित की ताकि प्रत्येक उसको दंडवत करे और आदि आदि। देखिए, अन्य जातियों का राज्य पवित्र मनुष्य की प्रतिमा की आराधना की जबरदस्ती के साथ आया, और अन्य जाति का राज्य पवित्र मनुष्य की प्रतिमा की जबरदस्ती के साथ चला जाता है। देखिए ठीक उसी प्रकार से, और वहाँ दीवार पर हस्तलेख था, अनजानी भाषा अन्य जाति के राज्य के आरंभ में थी, जिसे भविष्यद्वक्ता को छोड़ और कोई नहीं पढ़ सकता था। और आज दीवार पर हस्तलेख है, ये ठीक बात है, इच्छा बोध, ये परमेश्वर की महिमा उन चीजों को छोड़कर चली गई। और हस्तलेख दीवार पर है और आत्मिक बुद्धि से पढ़ा जा सकता है, जो आत्मिक बातों में विश्वास करता है और परमेश्वर के आत्मा से उत्पन्न हुआ है। पूरा बेलशेजर बाहर गया और प्रभु के बर्तनों को लिया और उसमें दाख मधु पिए। क्यों? वो एक अविश्वासी था। उसने सोचा कि वो एक विश्वासी है, परंतु वो एक अविश्वासी था। देखिए यही है, उसने वचन का अविश्वास किया। आहाब एक अविश्वासी था, यद्यपि उसने ऐसा कार्य किया कि वो नहीं है। नहीं, वो विश्वासियों के मध्य में था, परंतु वो एक अविश्वासी था। उसने क्या किया? उसने एक मूर्ति पूजक से विवाह किया और मूर्ति पूजा को इसराइल के मध्य में ले आया। वो एक अविश्वासी था, हम ये जानते हैं। उन्होंने परमेश्वर के समस्त वचन को कि वो सत्य है नकार दिया। अविश्वासी, देखिए स्मरण रखिए, वो एक ढोंगी है और वो इस प्रकार व्यवहार करता है। वो कहता है कि वो विश्वासी है, परंतु वो इसका इनकार करता है। उसने कहा ठीक है, इसमें से इतना ही पर्याप्त है, परंतु यदि सब लोग ठीक नहीं है तो ये उसे अविश्वासी बना देता है। आपको उसके हर शीर्षक, हर बिंदु का विश्वास करना होगा। हर वो बात जो वहाँ कही गई है उसे सत्य होना ही है। यदि वो सत्य नहीं है, यदि अब आप कहते हैं मैं उसका विश्वास नहीं करता, तो ठीक है, फिर आप अविश्वासी हैं। वह एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, एक बार एक सेवक ने मुझसे कहा, श्रीमान ब्रैनम, मैं चिंता नहीं करता कि आप कितने भी लोगों को उत्पन्न कर दें जिनके लिए आपने कहा कि वे चंगे हो गए, मैं इसका विश्वास नहीं करूंगा। मैंने कहा निश्चय ही आप इसका विश्वास नहीं कर सकते, आप अविश्वासी हैं। ये आपके लिए नहीं था, ये केवल विश्वासियों के लिए है। आपको इसका विश्वास करना ही है, समझे, और वे इसका विश्वास नहीं करते। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति को उसमें देखें कि क्या पौलुस ने उन भविष्यद्वक्ताओं के विषय में कहा है, कह रहा है कि वे होंगे ईट घमंडी, सुख विलास के चाहने वाले, बजाय परमेश्वर के प्रेम के भक्ति का भेष धरते हैं, परंतु उसकी सामर्थ का इनकार करते हैं, वचन की सामर्थ का, ऐसों से अलग रहना। ध्यान दें, वे संपूर्ण वचन को नकारते हैं, परंतु हर रूप में वे धार्मिक हैं। वे सच्चे शब्दों में अविश्वासी हैं, यद्यपि ये प्रमाणित हो चुका। इन सारे युगों में से होते हुए परमेश्वर ने इन सब लोगों के वचन को प्रमाणित किया जिनके विषय में मैंने बात की, नूह से मूसा और वे सारे भविष्यद्वक्ता और आदि आदि। परमेश्वर अलौकिक प्रमाणित वचन के द्वारा बोला और तब भी वे लोग इस वचन को छोड़कर चले गए। और यहाँ पर ये चेले, वे 70 खड़े हुए हैं और यीशु को सब कार्य करते देखा जो उसने किए, और पवित्र वचन को जानते हैं, और वो उन्हें बता रहा है कि वो युग था कि ये घटित होना था। और तब जब उन्होंने कुछ कहा कि मनुष्य का पुत्र, तब तुम क्या कहोगे, जब वो उन्हें रोटी तोड़ने के विषय में बताने लगा और आदि आदि, और आगे बढ़ते हुए उन्हें आत्मिक बातों के विषय में बता रहा था, और उन्होंने कहा ओह ये तो कठिन बात है। उसने कहा तब तुम क्या कहने जा रहे हो, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को ऊपर स्वर्ग में जाते हुए देखोगे जहाँ से वो आया है। कहा क्या शरीर या क्या ये आत्मा है जो जिलाता है, समझे। और तब वे चले गए, कहा ओह ये नहीं, मैं इसका विश्वास नहीं कर सकता, समझे। वे वचन पर छोड़कर चले गए, वे ये देखने के लिए भी नहीं रुकेंगे कि क्या घटित होता है। यही अविश्वासी है। तब वे क्या करते हैं, हम पाते हैं कि वे कि ये लोग, ये विश्वासी, एक कहलाने वाले विश्वासी, परंतु धर्म के भेष में, और वे परमेश्वर के वचन की सत्यता को प्रमाणित होते हुए देखने में असफल रहे, क्योंकि ये उसके विरुद्ध था जो वे विश्वास करते थे। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप क्या विश्वास करते हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने धार्मिक हैं, या इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं। निष्कपटता क्यों, इसका कोई लेना देना नहीं, क्यों नहीं। मैंने बहुत ईमानदार व्यक्ति देखे हैं, मैंने देखा है मूर्ति पूजक अपने बालकों को जला देते हैं, माँ को अपने बालकों के साथ मगरमच्छ को खिला देते हैं, कोई मसीह क्या करेगा, ये उससे अधिक है, समझे। ईमानदारी से वे विश्वास करते हैं, निष्कपट, परंतु ईमानदार होते हुए गलत थे। लोग कहते हैं ठीक है ये कलीसिया खड़ी हो गई, कि आप ईमानदारी के साथ गलत हैं यदि ये वचन विरोधी है। अच्छा अब देखिए, मैं ऐसी बातों में विश्वास नहीं करता, जबकि बाइबल कहती है कि ये ऐसे ही है, यद्यपि, समझे। मैं विश्वास नहीं करता कि हमें क्या करना है, मैं चिंता नहीं करता कि आप क्या सोचते हैं, आपको ये नहीं करना पड़ेगा, परमेश्वर ने कहा है तो इसे करना ही है। उनके द्वारा ये चिन्ह प्रकट होंगे कहां तक समस्त संसार किसको हर प्राणी को। देखिए ये होगा होगा नहीं ये होने जा रहा है और इस घड़ी का ये संदेश जिसमें हम आनंदित हैं परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। अंतिम दिन सांझ के समय सब ज्योतियां चमक रही हैं और वे बातें जो खुल गई हैं और वचन सत्य सिद्ध होने के लिए प्रमाणित हुआ। दोनों भविष्यवाणियां जो की गई पूरी हैं उस वैज्ञानिक आधार पर और सब चीजें सिद्ध हो गई हैं कि यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है और इस पर व्यक्ति बाहर निकल गया। वो एक अविश्वासी है, वो आशाओं से परे है, वो शैतान की सामर्थ्य के द्वारा सुन्न कर दिया गया है, इसलिए उसके लिए कोई आशा नहीं है, वो आशाओं से परे है। अब ये क्या है? विश्वासी, अब अविश्वासी, अब ये तीसरा वर्ग। हम बनावटी विश्वासी के विषय में बोल रहे हैं। यही वो लड़का है, बनावटी विश्वासी। अब याद रखें, यहाँ ये सब तीनों खड़े हैं। अब हम पाते हैं वे ठीक अपने पिता के समान करते हैं। यहूदा, वहाँ पतरस और बाकी चेले विश्वासी थे, वहाँ 70 अविश्वासी थे और वहाँ यहूदा था, साथ साथ बना रहा, वो बनावटी विश्वासी था। वे क्या करते हैं? इस प्रकार के लोग तब तक लगे रहते हैं जब तक कि वे उसमें कुछ पा ना सकें, उसमें गलती। वे हर समय कोई किसी कमी को देखते रहते हैं। देखिए ये कैसे हुआ, देखिए यदि ये चलाकी है, यदि ये जादू है, तो वे बिकने के लिए तैयार हैं, वे इसकी प्रतीक्षा में हैं। अविश्वासी वो तो आसपास भी नहीं रुकता, उसने इस पर दोष लगाया और चला गया। विश्वासी चाहे जो हो जाए वो इसका विश्वास करता है, जो भी है, क्योंकि ये वचन है। ये आपके तीन वर्ग हैं। पुराना अविश्वासी चला जाएगा पहली बात पर जो कि कही गई, वो इसे पसंद नहीं करता, भाई वो अपना रंग वहीं दिखा देता है, वो एक अविश्वासी है। पौलुस ने कहा वे हमें छोड़कर चले गए क्योंकि वे हम में के थे नहीं, आरंभ में उन्होंने हमारे साथ चलना आरंभ किया। ओ तुम तो भली भांति दौड़े, किसने तुम्हें रोक दिया? देखा ये वे चले गए क्योंकि वे हम में के थे नहीं। जब वे वचन को सिद्ध रूप में बढ़ते हुए देखते हैं तो फिर वे क्यों किसी प्रकार का जादू टोना पाना चाहते हैं ताकि वे काम चला सकें, समझे? परंतु वास्तविक विश्वासी कोई प्रश्न नहीं करता, ये वचन में लिखा है और वे इसका विश्वास करते हैं और वे बढ़ते जाते हैं। ये ऐसा ही है, सदा यही लिखा गया है। यदि ये लिखा हुआ होता है क्यों आप इसका लग रहते हैं, कोई मतलब नहीं क्या होता है, ये लिखा हुआ होना चाहिए, समझे? और उन्होंने लिखा हुआ वचन देखा और उन्होंने इसका विश्वास किया और उन्होंने परमेश्वर की गति को उसके वचन में अनुभव किया। घड़ी, संदेश, समय को देखिए और वे इसके साथ साथ चले। जैसा कि मैंने आज प्रातः कहा, कितना बूढ़ा पिलातुस रात्रि में अपने चिंतापूर्ण विवेक के साथ फर्श पर चला फिरा होगा कि स्वयं को शुद्ध करने का यत्न कर रहा था। उसने कहा मेरी कोई शंका नहीं कि जब उसे रात्रि में बुला गया होगा, कहा मैंने अपने हाथ धो लिए हैं सारी रात्रि और मैं अभी भी नहीं समझ सकता। देखिए वे शुद्ध नहीं हैं, मैं उससे मिलने कभी नहीं जा सकता, मेरे हाथ लहू से सने हैं। ओ देखिए उसके अपराधी कभी ना बनिए, समझे? ये आपके हाथों पर है, इससे निकलने का मात्र एक ही मार्ग है, ये कि इसे स्वीकार करें, ये ठीक बात है, इसका भाग बन जाएं। इसीलिए ये बहाया गया था। अब बनावटी विश्वासी आसपास बना रहता है और भक्त के समान व्यवहार करता है जितना कर सकता है, परंतु हृदय के भीतर ये ढूंढने का यत्न करता है आप क्या, आप ये कैसे करते हैं, ओ कहीं ये रास इस भाग से भरा हुआ ना हो, ढोंगी। जी हाँ, यही यहूदा है, बिल्कुल यही। आसपास रहता है, उस वाले झुंड का भाग बन जाता है, वो खजांची था, देखा, वो आसपास खड़ा रहता है, वो पैसे के लिए सदा अपना हाथ आगे रखता है। आप एक बात बता सकते हैं, वो हमेशा धन कमाता है और इसके लिए अपना हाथ आगे रखता है। और ये बनावटी विश्वासी है, वो विश्वासी के समान व्यवहार करता है, परंतु हृदय के अंदर आप याद रखें वो यीशु को मूर्ख नहीं बना रहा था। 70 के चले जाने के पश्चात विश्वासियों ने स्वयं को स्थिर कर लिया और वो विश्वासियों की ओर घूमा। उसने कहा तुम में अभी एक चीज है, क्योंकि कहा मैंने तुम 12 को चुना है और तुम में से एक शैतान है। यीशु आरंभ से जानता था क्योंकि वो वचन था, वो हृदयों के गुप्त भेदों को जानता था। एक मिनट रुकना कितना कठिन था, गहराई से सोचें, लंबा सीधा, उसके लिए ये कितना कठिन होगा, सीधे सीधे जाकर, और एक व्यक्ति उसे भाई कहकर पुकारता है और हर समय इस बात को जानता था कि वो धोखेबाज था, ये उसे विचलित कर सकता था और उसे 30 चांदी के सिक्कों में बेच देगा। उसे ये बात अपने सीने में रखना कितना कठिन थी, और उसका मित्र साथ साथ चल रहा है। यहाँ तक कि उसने कहा मित्र, यहूदा का अपना मित्र कहा, क्या इस सारे समय मैं तेरे साथ नहीं था? अपने हृदय में इस बात को जानते हुए और ये नहीं कह सका, वो आरंभ से ही जानता था कि वो कौन है जो उसे धोखा देगा। यहाँ बनावटी विश्वासी केवल प्रतीक्षा कर रहा था। कहे तो वो ये गाएगा, ओ मैं इसका विश्वास करता हूँ, मैं इसका विश्वास करता हूँ और मैं इसका विश्वास करता हूँ। परंतु आप जानते हैं, मैंने ये किसी को कहते सुना कि ये अमुक अमुक समय है। और देखिए, कानों को इधर उधर लगाएं। एक वास्तविक विश्वासी वचन को छोड़ और कुछ नहीं सुनता, बस वो वचन पर ध्यान देता है, वो कमियों को नहीं ढूंढता, वो बेकार की बातों को नहीं देखता, वो परमेश्वर पर विश्वास करता है और ये तय हो गया और वो आगे बढ़ता रहता है। देखा, ये विश्वासी है। अविश्वासी एक मिनट में उब जाता है और वो संदेश सुनने के लिए 10 मिनट नहीं रुकता, उसे तो खड़े होकर बाहर निकल जाना है। ये उसके धर्मसार के विरुद्ध है और इससे कुछ लेना देना नहीं, इसलिए वो बाहर निकल जाता है। तब बनावटी विश्वासी साथ साथ बना रहता है। वो यहूदा, देखिए वो बनावटी विश्वासी है, देखिए वो व्यभिचार से उत्पन्न है, यदि मुझे ऐसा शब्द कहना पड़े। यहूदा वो साथ साथ बना रहा। इस समय कभी कभी ये बनावटी विश्वासी लोगों में बहुत विख्यात होते हैं, ये ठीक बात है। ये बनावटी विश्वासी, देखा, उनमें से कुछ शक्तिशाली, शिक्षित, डॉक्टर की उपाधियां पाए हुए, बड़े बड़े वेतन वाले, हर चीज वाले व्यक्ति होते हैं। उनमें से कुछ महान धूर्त मनुष्य होते हैं, जैसे कि शैतान के पुत्र होंगे। देखिए शैतान कैसे आकर हर वचन के साथ सहमत हो जाता है। वो केवल हवा में कमजोर भाग ढूंढने की प्रतीक्षा करता है कि कहाँ तक वो अपनी धोखा देने वाली सामर्थ को उसे धोखा देने के लिए दर्शाएगा। वो शैतान था। और यहाँ शैतान उस युग में यहूदा के रूप में था। वो शैतान पहले युग में था। क्या था? हर वचन के साथ सहमत हो रहा था, जब तक कि वो छोटी सी बात, वो एक स्थान ढूंढने का प्रयत्न कर रहा था जहाँ वो कमजोरी पा सके। और बिल्कुल ठीक यही यहूदा अब भी ढूंढ रहा है। वो सभा में आएगा और चारों ओर ध्यान से देखेगा, जब तक कि उसे वो स्थान ना मिल जाए जहाँ कि वो, ओ यहाँ है, यही है, समझे, ओ इस प्रकार से ये हो गया, समझे। ये बिल्कुल ठीक बात। आप में से बहुतों को याद होगा उस रात्रि जब वो मनुष्य मंच पर आ गया था। उसने सोचा कि यहाँ मस्तिष्क को पढ़ना, प्रार्थना पत्रों को पढ़ना, और कैसे उसने सोचा, और वो ठीक वहाँ पर था। भाई वो निश्चित था, उसमें ये था। और वो आसपास आया, वो उस कलीसिया से संबंधित था जो इसमें पूरे समाचार में विश्वास नहीं करते। और वो मंच पर आया, मैं थका हुआ था, वे मुझे ले जाना चाहते थे। ये विंडसर ओंटारियो में था, वहाँ एक संयुक्त राज्य से सीधा डेट्रॉइट विंडसर से था, वो बड़ा सभागार। और ये व्यक्ति स्लेटी रंग का सूट पहने आया और लाल रंग की टाई, बुद्धिमान दिखने वाला और चौड़े माथे के समान तेज तरार। वो मंच पर आया और मैं, वो चला गया और मैंने कहा, मुझे जरा अपना हाथ पकड़ने दो। मैंने कहा, मैं थका हुआ हूँ, मैंने बहुत सारे दर्शन देखे हैं, मुझे जरा अपना हाथ दो। और मैंने उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और उसने अपने हाथ मेरे हाथ के ऊपर रखा और मैंने कहा, श्रीमान आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं है, आप चले जाएं। उसने कहा, ओ यहाँ भी है। और मैंने कहा, अच्छा मुझे देखने दो। मैंने कहा, नहीं श्रीमान, एक भी चिन्ह नहीं है, नहीं श्रीमान, आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। उसने कहा, जाइए मेरा प्रार्थना पत्र देखिए। मैंने कहा, मैं चिंता नहीं करता कि आपने अपने प्रार्थना पत्र पर क्या लिखा है। मैंने कहा, मेरा प्रार्थना पत्र से कुछ भी लेने देना नहीं, ना सोचते हुए आप देखिए, मैं थका हुआ था, श्रमित था मेरा, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह आप देखिए फिर भी वहाँ था। याद रखें, यदि वो भेजता है तो ये उसका कर्तव्य है कि आपकी चिंता करें। ये मेरा नहीं है, ये उसका है, ये उसने भेजा है। मुझे तो जो सत्य है उस पर स्थिर रहना है। जब मूसा ने अपनी लाठी फेंकी और वो सर बन गई, और जादूगरों ने भी वही किया जो मूसा कर सकता था, परंतु वो वहाँ खड़ा रहा और परमेश्वर के अनुग्रह की प्रतीक्षा करता रहा। बस यही था, वही चीज, उसने आज्ञाओं का पालन किया। और आप जानते हैं क्या हुआ? क्या आप नहीं जानते? देखा, इस व्यक्ति ने कहा, अब उसने कहा, मेरा प्रार्थना पत्र को देखिए। मैंने कहा, अच्छा हो सकता है आपका विश्वास अधिक हो सकता है और ये कर दिया हो। आप देखिए, न सोचते हुए मैं उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। तब उसने अपने कोट के बटन खोले और अपनी छाती बाहर निकाली। उसने कहा, सभा से, तो आप हैं? और मैंने सोचा, यहाँ क्या हो रहा है? उसने चारों ओर देखा। उसने कहा, तो आप हैं यहाँ पर? कहा, ये तमाशा देखें, ये आपका यहूदा है, एक धार्मिक मनुष्य, एक महान नामधारी का प्रचारक। कहा, आप यहाँ हैं, मुझ में बहुत विश्वास था, वो बहुत निर्बल हो गया है, वो मस्तिष्क को नहीं पढ़ सकता, अब ये उसके पास नहीं आता है। और वहाँ उसने कहा, ये मेरा इतना बड़ा विश्वास नहीं है। कहा, मैंने इसे प्रार्थना पत्र पर लिख दिया है और अब ये उसे नहीं पकड़ सकता, आप देखिए ये जादूगरी है। मैंने सोचा, ये क्या हो रहा है? तब परमेश्वर का अनुग्रह उतर आया। मैंने कहा, श्रीमान क्यों शैतान ने आपके हृदय में डाला कि परमेश्वर को धोखा देने का यत्न करें? आधुनिक यहूदा, मैंने कहा, आप चर्च ऑफ क्राइस्ट से हैं, मुझे क्षमा करें। अच्छा, मैंने ये कह दिया, आप चर्च ऑफ क्राइस्ट के प्रचारक हैं, आप चर्च ऑफ क्राइस्ट से संबंधित हैं यहाँ संयुक्त राज्य से, और वो व्यक्ति वहाँ नीला सूट पहने बैठा है और आपकी पत्नी और उसकी पत्नी वहाँ बैठे हैं। कल रात्रि आप एक मेज पर बैठे थे जिस पर कुछ हरा हरा ऐसा सा कुछ बिछा था और आपने निर्णय ले लिया कि ये मस्तिष्क को पढ़ना है, और आज रात्रि आप आ रहे थे। वो व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने कहा, ये कोरा सत्य है, परमेश्वर मुझ पर दया करे। मैंने कहा, श्रीमान आपने अपने कार्ड पर टीवी और कैंसर लिखा है और अब ये आप ले लीजिए, ये आपका है। और उसने मुझे पेंट के पांचे पर से मुझे पकड़ लिया। उसने कहा, मैंने नहीं किया। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप आगे बढ़ जाएं, ये आपके और परमेश्वर के मत में है। आपने अपना नाश अपने कार्ड पर लिख लिया और ये उसे हो गया, उसमें का सारा देखिए, बनावटी विश्वासी धोखेबाज परमेश्वर की कुछ गलती पकड़ने का यत्न कर रहा है और उसके वचन की। यही यहूदा है, यही वो है। आपने देखा यहूदा कैसे निकल कर आया? देखिए वो व्यक्ति कैसे निकल कर आया। बनावटी विश्वासियों के साथ ऐसा ही होता है। देखा, बनावटी विश्वासी लोग, ओ उच्च शिक्षा प्राप्त, कभी कभी उनके धर्म मत और वचन के मत में एक महान प्रकटीकरण, और जब ये होता है वे अपने धर्म मत के लिए बिक जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके आगे आगे चलने वाले यहूदा ने किया। यहूदा अपने धर्म मत के लिए बिक गया, यीशु को बेच दिया, वचन उसके नामधारी को और जिसका उसने भाग होने का दावा किया, उसी यीशु मसीह को धोखा दिया। कभी कभी सेवक लोग मसीह के दास होने का दावा करते हैं, जब वचन उस दिन सिद्ध होता हुआ प्रमाणित होता है, ये जो इस घड़ी का संदेश है, तो वे अपने धर्म मत में प्रसिद्धि के लिए स्वयं को बेच देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यहूदा ने किया। सदूकी फरीसियों के लिए यीशु को धोखा दिया, वो आत्मा मरी नहीं, इसलिए ये विश्वासियों, बनावटी विश्वासियों और अविश्वासियों के मध्य में है। देखिए, ये ठीक वैसे ही आई और यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया, और बहुत से लोग आज खाने के प्रावधान $100 प्रति सप्ताह के लिए करेंगे। ठीक बात है, परमेश्वर का जो उनके मध्य में खड़ा हुआ है उसका इनकार करेंगे, जो उनके जीवन को लाया और पूरे वचन के साथ, और वे कहेंगे, ओ वे आश्चर्य कर्मों के दिन बीत गए, या आज परमेश्वर को ऐसी चीज की आवश्यकता नहीं है। समझे, ओ मैं यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मरियम की जय, ओ परमेश्वर की माता, तू स्त्रियों में धन्य है, और वो सारी बातें वे कहते हैं। और उनमें से कुछ ने कहा, मैं प्रेरितों के पंथ का विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान स्वर्गों और पृथ्वी की रचयिता पर विश्वास करता हूँ, मैं पवित्र रोमन कैथोलिक कलीसिया और सारी बातों का विश्वास करता हूँ। मुझे बताएं कि प्रेरितों के पास ऐसा पंथ कब रहा? यदि प्रेरितों के पास एक मत था, तो वो प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा हुआ है, प्रायश्चित करो और तुम में से प्रत्येक पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यदि उनके लिए कोई मत था, तो वो ये था कि उनका कोई मत नहीं था, वो वचन था। ये सत्य है, ये अभी भी वैसा ही है, ये पाप के रोग का नुस्खा है, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रायश्चित करो और पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, देखिए, और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परंतु उन्होंने यहूदा के समान बेच दिया, ये बनावटी विश्वासी है। उनमें से कुछ उच्च कोटि के गुणवान योग्य व्यक्ति थे, और ये बनावटी विश्वासी, उसको ध्यान से देखें, वो चालाक व्यक्ति है। ये छोटा व्यक्ति जो जल्द ही भर जाता है और हर बात पर कूदता और भागता है जो वो पसंद नहीं करता, आप उस पर कोई ध्यान न दें, वो आरंभ से ही बस एक अविश्वासी है। परंतु जब आप इस व्यक्ति को जो बनावटी विश्वासी है देखते हैं, साथ साथ है, देखिए, ये यहूदा है, यही वो है, एक महान गुणवान के समान। मैं यहाँ उसके नामों को पुकारने जा रहा हूँ, जो भी है, ताकि आप ये जान जाएं, जैसे एल्विस प्रेस्ली, रेड फोले, अर्नी फोर्ड, पैट बून, एल्विस प्रेस्ली एक पेंटिकॉस्टल, पैट बून चर्च ऑफ क्राइस्ट, रेड फोले चर्च ऑफ क्राइस्ट में डीकन, मैं सोचता हूँ अर्नेस्ट फोर्ड मेथोडिस्ट है, और वे सारे लोग उन गुणों के साथ तेज टेलीविजन पर, और लोग कह रहे हैं, क्या वे धार्मिक नहीं, वे गाना गाते हैं, इससे कोई भी मतलब नहीं। जी हाँ, संसार को धोखा दे रहे हैं, उन्हें इसमें क्या मिलता है? यहूदा को 30 चांदी के सिक्के मिले, एल्विस कैडली कारों का झुंड, और 200 या 100 और 50 लाख डॉलर या 10 लाख डॉलर रिकॉर्डों पर, और इस प्रकार की चीजें, पैट बून और वे बाकी, मैं चिंता नहीं करता कि वे कौन सी कलीसिया से संबंधित हैं, और सारी बातें, ये ढोंग है, ये बनावटी विश्वास, ये सामने है जो कि उनके जीवन को सिद्ध करती है, ये ठीक नहीं है। ठीक है, तब वे हैं उन गुणों के साथ जो महान संस्था चलाने वाले, संसारिक बुद्धि, वे सुसमाचार प्रचार करते हैं, तेज बुद्धिमान होने का दावा करते हैं। उस प्रशिक्षित व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सुना, वो प्रचारक नहीं है, वो भाषण देने वाला है। आज यही परेशानी है कि हमारे पास भाषण देने वाले हैं। यीशु ने कभी नहीं कहा कि जाओ और करने के लिए शिक्षित करो, उसने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो और प्रचार के ये चिन्ह होंगे, समझे। उन्होंने वक्ता बनना नहीं सीखा जो खड़ा हो सकता है और केवल उनके लिए अच्छी अच्छी बातें लाता है और जो आपको ये अनुभव कराता है कि आप ठीक उस महान दूत के सम्मुख बैठे हैं, वो ये नहीं है। भक्ति का भेष धरते हैं आप, देखिए ये वक्ता है न कि पवित्र आत्मा अपने कार्य में। कोई मामूली व्यक्ति जो अपनी ABC नहीं जानता, वो विश्वास की सामर्थ वचन के साथ आ सकता है और पवित्र आत्मा को कार्य करने दे, जिसके विषय में वो दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं जानता और इसका इनकार करता है। देखिए यही आपकी स्थिति है, महान लोग यहाँ श्रीमान, तो वो संस्था बनाने वाले हैं, वे संपन्न सफल तेज संसारिक बुद्धि वाले, ठीक जैसे शैतान ने हवा के साथ किया। वो छोटी असहाय महिला, वो सीधा उसके पास आया कि वो उस विचार के लिए स्वयं को बेच दे ताकि वो बुद्धिमान हो जाए, जो कि वो थी और वो इसी की खोज कर रही थी। बजाय इसके कि वो वचन के साथ स्थिर रहती जो उसने कहा, वो उसे इस विचार को बेचना चाहता था कि वो बुद्धिमान हो जाएगी और उसने उसका उत्पादन खरीदा। और आज भी वो यही करते हैं। इस संसार की बुद्धि परमेश्वर के लिए मूर्खता है। जी हाँ श्रीमान, नहीं श्रीमान, ओ बिल्कुल वही बात जो फरीसियों ने बेचा और किया, देखिए बुद्धि से जो वे जानते थे, परंतु परमेश्वर के संपूर्ण वचन का इनकार करते थे, जबकि ये पूरी रीति से सिद्ध कर दिया गया था और ये उन पर प्रकट कर दिया गया था, और वे फिर भी कुछ ढूंढने का यत्न करते थे और सोचते थे कि ये एक जादूगरी है। वे अपने मस्तिष्क में स्थिर नहीं थे, वे इसका विश्वास नहीं कर सकते थे। आप उन्हें कुछ भी बता दें, वो फिर भी वापस आ जाते हैं और वे केवल और इसे वे ग्रहण नहीं कर सकते। देखा आपने, और उन्हें देखिए, वे एक समय की प्रतीक्षा में थे, बस कोई एक कमी, वे केवल यही चाहते थे। यही है, यदि ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो मेरी सारी कमियां प्रकट हो गई होती, यदि कोई मेरी होती। देखा, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट सुसमाचार है। मैंने हमेशा कहा है, कोई भी यदि आप मुझे सिखाते या कुछ भी करते देखें जो कि ठीक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, तो आप आकर मुझे बताएं। यहाँ वो चीज है जो कमियों को ढांक देती है जो आप ढूंढने का यत्न कर रहे हैं। केवल अपनी दृष्टि उस पर रखें और आप कोई कमी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें कोई कमी नहीं है। अब इसमें रखें, यहूदा ने सोचा कि उसे एक मिल गई, उस व्यक्ति ने सोचा कि उसे एक कमी मिल गई। बहुत सी बार वे सोचते हैं कि ये उन्हें मिल गया, परंतु ये सिद्ध हो गया कि ये नहीं है। ये बनावटी विश्वासी ढोंगी है। वे 90% वचन पर हैं, ऐसे ही हवा थी, परंतु 99 और 9 का दसवां, परंतु ये वो 1/10 था जिसके कारण सब मृत्यु और दुख थे। ये एक चीज है जो संस्था को दोषी ठहराती है और बातें, क्योंकि वे परमेश्वर के संपूर्ण वचन को नहीं लेते। ये बनावटी विश्वासी है। हमने देखा ये सदा ऐसा ही रहा है, परंतु सत्य का इनकार किया, एक समर्थित वचन का। ये सदा हर पीढ़ी में रहे हैं, हम इन्हें पाते हैं जैसे कि ये साथ साथ चलते हैं और बहुत धार्मिक भी होते हैं। अब मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आधा घंटा ले लिया है। यीशु, हम पाते हैं कि उसने हमें इन अंतिम दिनों के लिए चेतावनी दी है, और इस प्रकार के लोग वे बिल्कुल इतने वास्तविक लगेंगे कि वे चुने हुओं को बिल्कुल धोखा दे देंगे। ये क्या है? ये यहूदा है, वे लोग जो दूर तक जाते हैं। देखिए, यहाँ तक कि वे रो और चिल्ला सकते हैं और प्रेतों को निकालने का दावा करते हैं और हर बार और पलटकर वचन का इनकार करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, उनका भक्ति का भेष है। वे तो लगभग, देखिए यहूदा कहाँ से आया, यहूदा की आत्मा सुसमाचार में आ गई, पेंतिकोस्तल के स्थान तक आ गई, परंतु जब यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे का समय आया और ये सारी चीजें जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ चलती हैं, वो चला गया, उसने अपने रंग दिखा दिए। और वो आत्मा उन नामधारी कलीसियाओं में रह सकती है जब तक कि वे सीधे सत्य को ना पाएं, तब वो सीधी सीधी उन पर आ जाती है, ये उनके आगे आगे चलती है, जैसे यूहन्ना यीशु के आगमन पर आगे आगे चला। अब आप कहते हैं यीशु ने कहा वे इतने समीप होंगे। अब चुने हुए, ये वो प्रकार है जिनके नाम उस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति से हुए लिखे हुए हैं, जीवन के समस्त वचन पर विश्वास करते हैं, ये चुने हुए हैं। अब इन लोगों पर ध्यान दें। अब मैं ये श्रद्धा पूर्वक कहता हूँ और सम्मान के साथ कहता हूँ, ईश्वरीय प्रेम के साथ, यदि मैं नहीं कहूँ तो मुझे भी वेदी की बुलाहट की आवश्यकता है। ध्यान दें, यीशु ने कहा वे चुने हुओं को धोखा देंगे। अब ये मेथोडिस्ट नहीं होंगे, ये बैप्टिस्ट नहीं होंगे। हम जानते हैं वे आरंभ से ही अविश्वासी हैं, परंतु ये पेंटिकॉस्टल संस्था जो इस नामधारी में ले गए, उन्होंने अपनी रेखा खींच ली बिना वचन के, और रेखा खींचकर अपनी संस्था को उसमें कर लिया और वचन को बाड़े से बाहर कर दिया। वे चुने हुओं को धोखा दे देंगे, इतने मिलते जुलते होंगे। कहते हैं वे रोए, चिल्लाए, वे ऊपर नीचे कूदे, वे चंगाई सभाओं का दावा करते हैं। ऐसे ही यहूदा ने किया और ऐसे ही उन सब ने किया। जब वे चले गए, आनंदित होते हुए वापस आए और आदि आदि, और यहाँ तक कि उनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हुए थे। परंतु स्मरण रखें, दुल्हन उस झुंड में नहीं आती है, वो रैप्चर में जाती है और न्याय में। न्याय तय था और पुस्तकें खुली थी, दुष्ट और दूसरी पुस्तक जो कि जीवन की पुस्तक थी, ये खुली थी और वहाँ दुल्हन न्याय करने के लिए थी, समझे। दूसरी पुस्तक खुली थी जो कि जीवन की पुस्तक है, वो भेड़ एक और है और बकरी दूसरी ओर। देखिए, लोग जो पहले मर गए थे, जिनको कभी भी सुअवसर नहीं मिला, वे होंगे जो अलग होने थे। परंतु अब ध्यान दें, धोखा हर चुने को उस झुंड पर ध्यान दें। ये वो झुंड जो साथ साथ चलता है। हाँ भाई, हालेलुया, जी हाँ, परमेश्वर की महिमा हो। और सीधे सीधे आपके हृदय में आप देखिए, वे जो आपके लिए कार्य कर रहे हैं, क्या आप कलीसिया में हैं? क्यों? भीड़ जमा करने के लिए, उनके सारे पैसे निकलवाने के लिए वे इसके बाहर जा सकते हैं। आप सोचते हैं मैं नहीं जानता? वे ये नहीं सोच सकते, मैं ये जानता हूँ, परंतु मैं ये जानता हूँ। यीशु आरंभ से जानता था कि कौन धोखेबाज है, देखा देखा। परंतु उसने क्या किया? उसने केवल उस समय तक प्रतीक्षा की। यही हमें सदा करना चाहिए, उस समय तक प्रतीक्षा करें, अपने में हलचल ना करें, उस घड़ी तक प्रतीक्षा करें। भेष धरते हैं और साथ साथ चलते हैं, ये धोखा देने वाला झुंड है। इस धोखेबाज का ध्यान करें कि वो झुंड वहाँ है, विश्वासी नहीं, नहीं अविश्वासी नहीं, परंतु बनावटी विश्वासी। ओ, वे क्या कर रहे हैं? बस तब तक साथ साथ कमजोरी में चलते रहते हैं जब तक वे सोचते हैं कि वे कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं, तब इन महान संस्थाओं में जड़ देते हैं जो कि बिल्कुल विरोध में है। और वे ये जानते हैं, देखिए, वे ये जानते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, वे सदा अपने लोगों को आपके आने से पहले चेतावनी दे देते हैं, इसकी मत सुनना। एक व्यक्ति वहाँ ओयो में निर्भीकता से खड़ा था जब भाई किड सभी चंगे हुए थे, वहाँ मंच पर आकर बोला, अब इसमें कोई संदेह नहीं, भाई भणम भविष्य तकता है जब वे अभिषेक में होते हैं। परंतु अब कहा, जब उन पर से अभिषेक हट जाता है, कहा इनकी शिक्षा का विश्वास ना करें क्योंकि ये गलत है। और वो नहीं जानता था कि मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और प्रभु ने मुझ पर ये प्रकट कर दिया, और मैं सीधा वहाँ गया और आप में से बहुत से वहाँ थे। मैंने कहा, एक मनुष्य ऐसी बात क्यों कर सकता है, जबकि वो वचन। अब देखिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भविष्यद्वक्ता हूँ, उसने ये कहा है। और भविष्यद्वक्ता, वचन का भविष्यद्वक्ता, भविष्य बताने वाला। अब अंग्रेजी में भविष्यद्वक्ता का अर्थ एक प्रचारक है, परंतु पुराने नियम में भविष्य बताने वाला यानी सीयर एक मनुष्य जिसके पास दिव्य अनुवाद वचन का होता है, और ये सिद्ध किया कि वचन ये उसके पास आता है और इसे पहले से देखता है, वो यही था। और एक मनुष्य ये कह रहा है कि मनुष्य भविष्यद्वक्ता होने के नाते, और अब तब ये कहता है कि उसकी शिक्षा गलत है। यदि ये पैसे से कार्य करने की योजना नहीं है, क्या है? समय बिल्कुल निकट है जब वो बात दृश्य पर आई। जी हाँ, परंतु ये बनावटी विश्वासी का प्रकार है, आपकी पीठ थपथपाते और आपको भाई कहते हैं जैसे यहूदा। परंतु स्मरण रखें, वो आरंभ से ही जानता है, वो अब भी जानता है। जी हाँ श्रीमान, वे भी जो इस टेप को सुन रहे हैं, याद रखें, ये ठीक बात है, आप इन्हीं किसी वर्ग में से हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। अब हम बंद करने जा रहे हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ पर है, हर व्यक्ति जो इस टेप को सुन रहा है, और यदि भी एक दिन मुझे ये संसार छोड़ना होगा, ये टेप फिर भी जीवित रहेंगे, ये ठीक बात है, समझे। और आप इन्हीं किसी एक वर्ग में हैं, आपको इन्हीं में से ही होना है, ये सही बात है, आप बच नहीं सकते, आप इन्हीं किन्हीं श्रेणियों में से हैं। अब क्या, स्वयं को बाइबल के चरित्र से प्रमाणित करें जो विश्वास किया है। जब आपने वचन का विश्वास किया, जब ये समर्थित था, जैसे आज रात्रि मैंने सिद्ध किया है कि ये सदा समर्थित वचन रहा है और लोकप्रिय विश्वास के विरुद्ध है। यदि आप नूह के दिनों में होते, अब मैं आपसे पूछूं, तो आप किस ओर होते? कलीसिया की ओर या नूह की तरफ भविष्यवक्ता समझे। यदि आप मूसा के दिनों में होते तो क्या आप मूसा के संदेश का विश्वास करते उसके परमेश्वर के द्वारा सिद्ध और समर्थित होने के पश्चात, परंतु क्या आप कोरा के साथ जाते और दातान और उनके और कहा केवल तू ही एक पवित्र मनुष्य नहीं है, दूसरे लोग भी इन चीजों को कर सकते हैं जो तू करता है। देख तुम्हें एक ही होना होगा और आप आज रात्रि हैं। या क्या आप डेनियल की ओर होते या फिर कलीसिया के साथ जो वहाँ नबूकदनज़र की दावत के साथ जो वो दे रहे थे समझे। क्या आप बाहर होते या आप उस शोरगुल में वो जो बड़ी चीज वहाँ हो रही थी। क्या आप एलिया के साथ होते जो वहाँ अकेला खड़ा था और सनकी कहलाता था एक मनुष्य जो होश खो चुका है वहाँ पहाड़ की चोटी पे खड़ा है और उसका सिर धूप में चमक रहा है, एक टेढ़ी सी छड़ी उसके हाथ में है, चिड़िया उसे खाना खिला रही है, ओ कोई सनकी। या आप याजकों और उन सब के साथ इजाबेल और बाकी वे आधुनिक वेशभूषा वाली औरतें और एलिया वहाँ खड़ा हुआ उन्हें फटकार मार रहा है जितनी जोर से मार सकता था, आप और आपकी पत्नी कौन सा भाग लेते। जरा सोचिए आज रात्रि अपनी स्थिति को देखिए। यीशु के दिनों में क्या आप इस लड़के के साथ होते जिसके पास कोई विश्वास वाली उपाधि नहीं, उसका नामधारी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा तुम कौन से विद्यालय से आए हो, हमारे पास तुम्हारा कोई लेखा जोखा नहीं है, तुम्हें इतनी बुद्धि कहाँ से मिली, यदि हमने तुझे ये बातें नहीं सिखाई तो तूने ये कहाँ से सीखी, तुम कौन से विद्यालय से आए हो, क्या तुम मेथोडिस्ट प्रेस्बिटेरियन या बैप्टिस्ट हो, वो इनमें से नहीं है। ये ठीक बात है, वो वचन था भाई, ये बात बिल्कुल सही है। क्या आप उस फरीसी की ओर होते जो आधुनिक विश्वास वाला नम्र बूढ़ा याजक जो बहुत ही सज्जन और अच्छा प्रतीत होता है और जब से नीशन सभा हुई तब से ये संस्था खड़ी है या जब से लूथर ने इसे संस्थागत किया है, या आप कौन से झुंड में से होते, क्या वहाँ आप कौन से झुंड में होते, क्या वचन के साथ होते जबकि आपने इसे समर्थित और सिद्ध होते हुए देखा, वो उस दिन का संदेश था या आप कलीसिया का समर्थन करते। अब आज रात्रि जरा अपने आप को चित्रित करें, क्या आप वहाँ चेलों के साथ होते जब उन्होंने यीशु को देख लिया और वे सब भेद भरी बातें, जब वो उन प्रचारकों पे चिल्लाया और कहा तुम सर्प के बच्चे हो। उन ईमानदार पुराने प्रचारकों ने वचन का अध्ययन किया था, कहा तुम कुछ नहीं केवल चोरों की खो हो और तुम मनुष्यों की मृत हड्डियों से भरे पड़े हो, तुम चूना फिरी दीवारों को छोड़ और कुछ नहीं हो, समझे, तुम सांप के बच्चों। क्या आप इस प्रकार के गर्म स्वभाव वाले व्यक्ति के संग खड़े होंगे जो वहाँ खड़ा हुआ और फटकार और लज्जित कर रहा है, तुम में से मुझे कौन पाप के लिए दोषी ठहराता है यदि मैंने वो नहीं किया जो पिता ने कहा। उन्होंने कहा मत सुनो, उस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है, वो सनकी है, वो पागल है, उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा है। देख अब वो ये कैसे करता है, उसमें भावी बताने वाली एक आत्मा है, वो बताती है वो क्या है। इससे पहले कि इसकी माँ का विवाह होता वो पहले से ही गर्भ में था। देखा वो कौन से विद्यालय से पढ़कर आया है, हमारे पास उसका एक भी लेख नहीं है कि वो कभी व्याकरण के विद्यालय में गया हो, और तो भी वो जब 12 वर्ष का था उसने परमेश्वर के वचन से याजकों को आश्चर्यचकित कर दिया और हैरान कर दिया था। वो कौन से विद्यालय से निकल कर आया, वो ऊपर के विद्यालय से। जब तुम मनुष्य के पुत्र को वहाँ से उतरते हुए देखोगे जहाँ से वो उतरा है, देखिए यही उसका विद्यालय है। परंतु क्या आप चेलों के संग खड़े हुए इस प्रकार के मनुष्य के साथ जब प्रकट होने का समय आया, या आप वास्तव में उन 70 के संग चले गए और कहा भाई हम तो अपनी कलीसिया में वापस जा रहे हैं यदि आप इस प्रकार की शिक्षा देंगे, ये कहते हैं कि आप मनुष्य के पुत्र हैं, जब इसको छोड़ आप क्या हैं, मैं एक मनुष्य के समान हूँ, मैं तुम्हारे साथ खाता हूँ, और ये कहने का यत्न कर रहे हैं कि मैं कुछ हूँ। मैंने तुझे ध्यानपूर्वक देखा है, मैंने तेरी निर्भरताएं देखी है, मैंने तुझे रोते हुए देखा है, मैंने तुझे ये वो कुछ करते हुए देखा है, मैंने तुम्हें अपने साथ जंगल में जाते हुए देखा और इस प्रकार की सारी बातें, और तुम तो मात्र मनुष्य हो और कहता है कि तू ऊपर स्वर्ग से आया है, ये तो मेरे लिए बहुत ही अति हो गई। क्या आप उनके साथ चले जाते हैं या आप उन 70 के साथ चले जाते हैं या आप चेलों और मसीह के साथ चले जाते हैं। जब संत मार्टिन ने कलीसिया में यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को करने का यत्न किया, जब उसने चिन्हों और आश्चर्य कर्मों और चीजों को पकड़े रहने का यत्न किया, तो कैथोलिक कलीसिया ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया और यहाँ तक उसे बिल्कुल भी मान्यता नहीं दी और उसे बाहर निकाल दिया। तो क्या आप कैथोलिक के धार्मिक मत को लेंगे या फिर आप संत मार्टिन के साथ खड़े होंगे। जब उसने इस सब प्रकार के चित्रों को लेने से मना कर दिया, मृत लोगों के और उनकी प्रतिमाओं की आराधना करना और आदि आदि, जब उसने इन धर्म सिद्धांतों को जो उसमें जोड़े गए थे लेने से मना कर दिया, उसने कहा वचन ही सच्चा ठहरे और परमेश्वर ने उसका समर्थन बड़े बड़े चिन्हों और आश्चर्य कर्मों से किया और जो भी उसने पहले से बताया घटित हुआ और हर चीज जो उसने की वो परमेश्वर के आत्मा में चला और उसे सिद्ध किया और उनमें से एक याजक नहीं था। इसके विषय में कोई कुछ ना कर सका। क्या आप उसकी ओर रहेंगे और संत मार्टिन के साथ जाएंगे या आप कैथोलिक के धर्म मत के साथ जाएंगे? अब वचन, अब परमेश्वर का वचन या कलीसिया की हट धार्मिकता आपके सामने है, क्या आप स्वीकार कर सकते हैं जो कलीसिया की हट धार्मिकता है या आप जो वचन कहता है वो लेते हैं? स्मरण रखें, हर युग में ऐसा ही था जैसे आज है। हमेशा से लोगों के मध्य में एक लोकप्रिय विश्वास रहा है और ये हमेशा वास्तविक वचन से थोड़ा बहुत विपरीत रहा है। याद रहे, ये कभी भी सीधा सीधा इसको इनकार नहीं करता। ओ नहीं, मसीह विरोधी भी वचन का इनकार नहीं करता, निश्चय ही नहीं। वो कहता है कि वो इसका विश्वास करता है, परंतु सारे का नहीं, जैसे यहाँ लिखा है। देखा, शैतान ने हवा को बताया, हवा ने उस सब का विश्वास किया, परंतु वो थोड़ा सा जो उसने बताया था। वे इसको सारा का सारा लेते हैं, परंतु थोड़ा सा, पानी के कुंड तक जाते हैं या कुछ और हो सकता है। आपको हर छोटी से छोटी बात देनी है, जिस प्रकार से वो यहाँ पर है, जैसा कि यहाँ पर कहा गया। आपसे पहले कामों को फिर से करवाने का कारण हो सकते हैं, परंतु ये केवल वो है जो वचन ने कहा। ये शैतान की चालाकी तब से हो रही है जब से वो हवा पर चली, थोड़ा सा अविश्वास एक थोड़े से वचन का। और हमेशा लोगों के तीन श्रेणियों को अलग अलग करता है, वचन इन लोगों को अलग अलग करता है। हर युग में ये इसी प्रकार से रहा है, कोई भी युग जो कभी रहा हो ये इसी प्रकार से रहा है। जब परमेश्वर किसी चीज को दृश्य पर लाता है और स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि ये उसका वचन है, तब वे जो उसका अनुकरण करते हैं, जो विश्वासी होने का दावा करते हैं, और वे हैं। ऐसे भी हैं जो पलटेंगे नहीं, वे वचन का विश्वास करते हैं। जब तक आप वचन में स्थिर रहते हैं, वे इसका विश्वास करते हैं। परंतु जब ये उसके थोड़ा सा विपरीत आता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि परमेश्वर उसको कितना प्रमाणित करता है। जो वे विश्वास करते हैं, वे कहते हैं ठीक है, मैं इसके विषय में कुछ नहीं जानता, ये अविश्वासी है। या आप इसलिए साथ साथ अनुकरण कर रहे हैं ये देखने को, जब तक आपको ये कहने का अवसर नहीं मिलता, कहते हैं ओ यहाँ पकड़ लिया। एक यहूदा को किसी को पीछे से छुरा घोंपना था, जैसे उसने किया। मैं जानता हूँ जल्दी या देर में ये बाहर आ जाएगा, आप पकड़े जाएंगे। ये बनावटी विश्वासी है। इसका हर बिंदु हम ये बाइबल में देखते हैं। एक बार यहाँ एक छोटा लड़का केंटकी में, जो पहाड़ों में पलकर बड़ा हुआ था, उसने कभी भी कहीं दर्पण नहीं देखा था। उसके यहाँ एक छोटा टुकड़ा पेड़ पे लटका हुआ था, परंतु उसने स्वयं को कभी नहीं देखा था। बताया गया कि वे लुईविल में आया और अपनी मौसी के यहाँ ठहरा। वो एक अच्छे मकान में रहती थी, एक अच्छा पुराने ढंग का मकान। जब वे किसी एक शयन कक्ष में गए जिसके पूरे दरवाजे में दर्पण लगा था, दरवाजे में ऊपर से नीचे तक, देखा। और जब उस छोटे लड़के ने घर में भागना आरंभ किया, वो रुक गया। छोटे जॉनी ने छोटे जॉनी को देखा और उसने अपना सर खुजाया और दर्पण में छोटे जॉनी ने अपना सर खुजाया। वो हंसा और दर्पण में छोटा जॉनी हंसा। वो ऊपर नीचे कूदा और दर्पण में छोटा जॉनी ऊपर नीचे कूदा, समझे। वो बहुत पास आया, उसने सोचा ये छोटा लड़का है जिसके साथ वो खेल सकता है, इसलिए वो चला और वो सीधा शीशे से जाकर सट गया। वो घूमा और उसके अभिभावक उसे देख रहे थे। उसने कहा, मामा ये मैं हूँ। अब आप इसमें देखिए, और आप कौन से हैं? इनमें से कौन सा छोटा जॉनी आपकी नकल कर रहा है? आप कौन से हैं, समझे? आप उनमें से एक हैं। ये उनमें से एक है, वो जो घूमेगा। वो पहला दोष आपको मिल गया, जिसे आप कमी कहते हैं, समझे। इसे वचन से परखे और देखिए यदि ये ठीक है, यदि वचन सारी बातें सिद्ध करता है। सारी बातें वचन से सिद्ध होती हैं, यीशु ने ऐसा ही कहा है। जी हाँ श्रीमान, जो अच्छा है उसे पकड़े रहो, उसने ठीक यही कहा। अब दूसरे युगों में परमेश्वर के वचन दर्पण में देखें और देखें कि इन तीन श्रेणियों में आप कहाँ प्रमाणित होते हैं। अब जरा सोचें, यदि आप नूह के दिनों में होते, यदि आप मूसा के दिनों में होते, यदि आप यीशु के दिनों में होते, या इनमें से किसी एक के, जो भी है, जरा सोचें आप कौन से झुंड में प्रमाणित होते हैं। आज रात्रि इस पर सोचें।
तब आपकी उपस्थिति, अब जरा सोचें, अब ये गहरा है,
अब इसे ऊपर से ना निकलने दें। आपकी अभी की स्थिति आपको सिद्ध करती है कि आप कौन सी वाली श्रेणी से संबंधित थे। अब आप स्वयं अपने न्यायी हैं, सिद्ध करता है कि आप क्या हैं। श्रद्धालु सेवक, आप कौन से झुंड से होते हैं? जब यीशु ने ये वक्तव्य दिया, जो कि विश्वास करने के लिए कठिन था, क्या इस बात को पूरी रीति से प्रमाणित करने के पश्चात कि वो वचन था? और तब भी वो वक्तव्य आपने इस प्रकार की बात कभी नहीं सुनी होगी। तब तुम क्या कहोगे मनुष्य के पुत्र को, जब तुम ऊपर स्वर्ग में जाते देखोगे, जहाँ से वो आया है? और आपने कहा अच्छा मैं जानता हूँ कि वो कहाँ जन्मा था, मैं उसके पिता को जानता हूँ, मैं उसकी माँ को जानता हूँ, और यहाँ कहता है कि वो वहाँ चढ़ने जा रहा है जहाँ से वो आया है। यह आपके लिए थोड़ा अधिक हो गया क्या? नहीं हो गया श्रीमान, ओ यह आपके लिए थोड़ा सा अधिक हो गया, आप इसे नहीं पचा सके। हो सकता आज भी यही हो, तो फिर परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखिए और देखिए कि आप कहाँ खड़े होते हैं। ओ मनुष्य को धोखा देने वाले, तुम ये कभी मत करना। देखिए आप इन्हीं श्रेणियों में से हैं। अभी आपकी वर्तमान स्थिति, मस्तिष्क की वर्तमान स्थिति, जो आप यहाँ दिखाई देने वाली सभा में हैं और आप जो अदृश्य सभा में होंगे, इस टेप की, इस टेप के सुनने के पश्चात जो आपके मस्तिष्क की वर्तमान स्थिति है, ये सिद्ध करती है कि आप किस वर्ग में से हैं। यह आपको ठीक बताता है कि आप कहाँ हैं, या आप वचन के विश्वासी हैं और उसके साथ स्थिर रहेंगे, या आप चले जाएंगे या टेप को बंद कर देंगे। देखिए ये बताता है कि आपने क्या किया है। आप इसे सुनना नहीं चाहते और इसे बंद करते हैं और कहते हैं मैं ये नहीं सुनना चाहता, ये अविश्वासी है। देखिए परखने के लिए आप इसे रोकेंगे नहीं और देखते हैं यदि ये सत्य है या नहीं, समझे। ये इसके आसपास रहकर इसमें कोई गलती ढूंढने का यत्न करते हैं, तब भी आप जान जाते हैं कि आप कहाँ हैं, ये आपको बताता है। परमेश्वर इसका विश्वास करने और इसका पक्ष लेने में हमारी सहायता करे, इसके प्रति ईमानदार रहें और वचन का पालन करें, क्योंकि ये वचन है। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? आइए आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, समयों में ये बातें कहना कितना कठिन है, और जानते हुए कि संभवतः दसियों हजार लोग इस टेप को सुनेंगे, जैसे कि ये बाहर विभिन्न देशों में जाते हैं और समस्त संसार में, परंतु प्रिय प्रभु ये सत्य है, ये इतना सत्य है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पहले मेरे हृदय को शुद्ध करें। ओ प्रभु मुझे परखें, मुझे जांचें, प्रभु मेरी ओर दृष्टि करें। मैं निर्बल हूँ, मैं थका हुआ हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मेरा गला खरखरा रहा है, मेरे होंठ सूखे हुए हैं और मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। प्रभु ये बहुत बार नहीं होगा, हो सकता है जब तक मैं जाऊँ सूर्य के बहुत सारे चक्कर, और अब पिता मुझे जांचें यदि कुछ ऐसा है जो मैं गलत कर रहा हूँ और नहीं जानता। प्रभु मुझ पर उसे प्रकट कर दें, आप मुझे दिखाएं, अब मैं उसे ठीक करने के लिए तैयार हूँ। मैं परमेश्वर के वचन के दर्पण में स्वयं को देखता हूँ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। क्या मैं अपने प्रतिबिंब में यीशु मसीह को देखता हूँ? क्या ये वही व्यक्ति है जो मैं दर्पण में देखता हूँ? क्या मैं पुराने नियम के विश्वासियों में से किसी को देखता हूँ या नए नियम के विश्वासियों को? क्या मैं बनावटी विश्वासी को देखता हूँ? क्या मैं स्वयं को एक अविश्वासी के समान देखता हूँ जो वचन का पक्ष नहीं लेगा और वचन को नहीं सुनेगा और इसके बदले में नामधारियों के विचारों को लूंगा? क्या मैं स्वयं को आसपास एक छोटी सी गलती को ढूंढने का यत्न करते हुए देखता हूँ? प्रभु यदि ये ऐसा है तो प्रभु मुझे शुद्ध करें, होने दे कि मेरा हृदय शुद्ध और निष्कपट हो प्रभु, क्योंकि ये मेरा जीवन है, मैं इसे सही चाहता हूँ, मैं इसे अधूरा करना नहीं चाहता। यदि वास्तव में इसे करने का मार्ग है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ पिता। केवल यही नहीं, परंतु मैं गलत पुरुष और महिलाओं की अगुवाई करूँगा और उन लोगों की जिनसे मैं प्रेम करता हूँ और मुझे प्रेम करते हैं, नहीं तो मैं गलत होऊंगा। और पिता यदि कोई बात है, यदि मैंने आज रात्रि सोचा कि कोई नामधारी कलीसिया सही है या कलीसियाओं की परिषद ठीक थी, यदि अधिकांश लोग सही थे, तो प्रभु परमेश्वर मेरी सहायता करें कि मैं अच्छा मनुष्य बनूं और अच्छा मसीही, कि अपनी गलती को स्वीकार करूं और यहां खड़ा होकर इन लोगों को वहां भेजूं जहां मैं सोचता हूं कि ये ठीक होगा। मुझे शुद्ध करें, मुझे देखने और समझने दें। परंतु जब ये उन बातों पर आए प्रभु, जहाँ तक कि मैं इसे देख सकता हूँ, वे भेष धरे हुए हैं और वचन का इनकार करते हैं, आप ये इन्हें बता सकते हैं और तब भी वे कहते हैं ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, अब परमेश्वर इसकी आशा नहीं करता। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप वही यीशु हैं, आप वही परमेश्वर हैं जो आप कभी थे, आप अब भी परमेश्वर हैं और आप बदलते नहीं। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये बाइबल आपका वचन है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप और आपका वचन एक ही है। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप वचन को जीवित करने के लिए अपना पवित्र आत्मा देंगे और हमें जीवित होने की सामर्थ्य दें, कि किसी दिन जब जीवन पूरा हो जाए और आप हमारे साथ कार्य को पूरा कर लें, ताकि हम जीवित होकर स्वर्ग पर चढ़ जाएं, जहां हम संसार के रचने से पहले परमेश्वर के विचारों में थे। परमेश्वर इसे प्रदान करें। पिता हमारे पापों को क्षमा करें। यदि यहां कोई पुरुष या महिलाएं हो जो वचन के सच्चे विश्वासियों को छोड़ किसी और वर्ग में हो, तो परमेश्वर उनके हृदयों को शुद्ध करना। यदि कोई टेप को सुन रहा हो या इसे सुनेगा तो मैं उसके हृदय को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि आप उन्हें शुद्ध कर देंगे प्रभु। मैं उन्हें नष्ट होते हुए नहीं देखना चाहता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये समझने में हमारी सहायता करेंगे कि एक गलत दूसरे गलत को नहीं ठीक कर सकता। इसे करने का केवल एक ही मार्ग है कि दोनों गलत मार्ग से हट जाएं और ठीक हो जाएं। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप ये हमें यीशु मसीह के हमारे प्रभु के द्वारा प्रदान करेंगे, अपने झुके हुए सिरों के साथ, अपने झुके हुए हृदयों के साथ। अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मिनटों के लिए रुकें। जब मैंने नरक का दर्शन एक छोटे लड़के के समान देखा, उसकी भयानकता, तब हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, वो एक पूर्वाभास हो सकता था, ये हो सकता है, मैं नहीं जानता, ऐसा लगा कि मैं कहीं था, वो इतना स्वाभाविक था। तब बहुत अधिक समय नहीं बीता जब मैंने आशीषित लोगों के क्षेत्र को देखा। जब मैं नष्ट हुओं के क्षेत्र में था, मैं चिल्लाया, ओ परमेश्वर, यहाँ किसी भी व्यक्ति को ना आने देना। आप नहीं कर सकते, कोई भाषा आपको इसकी व्याख्या नहीं कर सकती कि उसकी भयानकता क्या है। उसे आपको बताने का कोई तरीका नहीं है। यदि आप ये विश्वास करते हैं कि कहीं आग और गंधक से भरा हुआ जलने वाला नरक है, तो देखने में वो ठंडी छायादार हरी चरागाह है जो भयानक स्थिति नष्ट लोगों की है और दयनीय जो उस स्थान से संबंधित है। और यदि मैं आपसे उन बातों को करूं जो मनुष्य की समझ से परे हैं, मैं तब भी उस आशीषित स्थान की व्याख्या नहीं कर सकूंगा कि कितना शांति भरा है। कभी भी नहीं मरना, कभी बूढ़े नहीं होना, कभी बीमार नहीं होना, सदा युवा रहना, सदा स्वस्थ रहना और कभी नहीं मरना, अनंत जीवन उस आशीषित युवावस्था में, और कोई पाप नहीं या कुछ नहीं, वो उसे वर्णन करने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ तक कि संत पौलुस, उसने कहा, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाया, यहाँ तक कि आप उसे समझ नहीं सकते, उसे वर्णन करने का कोई तरीका नहीं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। और अब जैसे ये निश्चय ही सत्य है, दोनों यहाँ जो दिखने वाली सभा जिसका आज रात्रि हम चित्रण कर रहे हैं, इन्हीं किसी वर्गों में से है। या तो हम वास्तविक विश्वासी हैं, इसे वचन से परखें। यदि वचन ने कोई निश्चित बात कही है और कलीसिया ने कुछ भिन्न कहा है, तो आप क्या लेने जा रहे हैं? परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखें और देखें कि कौन सी श्रेणी से आप हैं। और यदि आप आज रात्रि नहीं हैं, दोनों यहाँ और अदृश्य श्रोतागणों में, यदि आप नहीं हैं, यदि आप विश्वासी के साथ नहीं हैं, तो क्या अब मैं आपके लिए एक शब्द प्रार्थना कर सकता हूँ ताकि आप उस विश्वासी वाले प्रकार में आ जाएं? और क्या आपका वही अर्थ होगा जो परमेश्वर का है, अपने झुके हुए सिरों के साथ, अपने झुके हुए हृदयों के साथ परमेश्वर के सम्मुख आपकी आंखें बंद हों? कभी कभी लोग अपने हाथ उठाने में थोड़ा डरते हैं, अपने पड़ोसी से डरते हैं, जो कि उनको इस तरह से नहीं होना चाहिए, परंतु उन्हें टिकने की इच्छा होनी चाहिए और कहें, मैं गलत हूँ। वो जो अपना अपराध छिपाता है आशीषित नहीं होगा, परंतु वो जो अपने पाप को मान लेता है दया का पात्र होगा। समझे? पाप क्या है? अविश्वास। अविश्वास किस में? वचन में। अब यदि आप उस श्रेणी में नहीं हैं, तो ऐसी बातें जो आप बाइबल में देखते हैं, ताकि आप साधारणतः आपकी बुद्धि में है, आप इसे नहीं देख सकते। आप जानते हैं कि बाइबल ने ऐसा कहा है, परंतु आप इसे नहीं समझ सकते, और तब भी आप चाहते हैं, आप कहते हैं, परमेश्वर मुझे समझ दे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। क्या आप अपना हाथ खड़ा करेंगे और कहेंगे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो मुझे स्मरण रखें, परमेश्वर आपको आशीष दे, ये अच्छा है। समझे? वास्तव में इसके विषय में सोचें, क्या बाइबल में कुछ है जो कि मैं नहीं जानता? मैं डरता हूँ, मैं स्वयं को खोजने जा रहा हूँ इनमें से किसी एक वर्ग में। हो सकता है मैं स्वयं को उन 70 के साथ पाऊँ जो मैं वहाँ, जो कुछ है जो मैं, मेरे लिए ये समझना कठिन है कि कैसे परमेश्वर ये चीजें कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, यीशु एक साथ कैसे हो सकता है, ये बातें कैसे हैं? मैं ये नहीं समझता, मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं इसका विश्वास करना चाहता हूँ, और परमेश्वर मेरे अविश्वास में मेरी सहायता करे। मैं इसका भाग बनना चाहता हूँ, मैं वचन में भागी बनना चाहता हूँ, मैं इसे अपने में चाहता हूँ। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो तुम मांगो। संत यूहन्ना 15। हम जानते हैं कि ये सत्य है। देखिए, यदि तुम मुझ में बने रहो, अंदर और बाहर नहीं, और अंदर और बाहर, परंतु यदि तुम मुझ में बने रहो और ये वचन है और ये आप में रहता है, तो केवल तुम मांगो जो भी तुम चाहो और ये तुम्हें दे दिया जाएगा, ये तुम्हें मिलेगा। वो जो मेरे वचन ग्रहण करता और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। परंतु क्या पहले आप वचन को ग्रहण करेंगे? क्या आप वचन को ग्रहण कर सकते हैं? सारे वचन को, मसीह के सारे वचन को? मसीह अभिषिक्त वचन है, वो अभिषिक्त किया गया वचन है। मसीह का अर्थ अभिषिक्त किया हुआ, उस दिन के लिए अभिषिक्त वचन प्रकट किया गया, बचाने वाला, छुड़ाने वाला। यही जब उसे आना था और वो वही अभिषिक्त व्यक्ति उस स्थान को लेने के लिए था। अब ये अंतिम दिनों का पवित्र आत्मा है कि सांझ का उजियाला चमकाए, उस विश्वास को फिर से स्थापित करे जो नामधारियों के द्वारा कुचला गया था, नामधारियों को दोषी ठहराए और मूल विश्वास पर वापस आए, बाइबल के उस मूल विश्वास के साथ, मूल बाइबल, इसके प्रत्येक वचन का विश्वास करते हुए, न कि इसमें मिलाते हुए और ये बनाते हुए कि ये कहती है, वो कहती है। केवल वही कहें जैसे कहा गया है और आपको उसी प्रकार से विश्वास करना है। क्या कोई है जिसने कभी हाथों को नहीं उठाया और अपना हाथ उठाना चाहते हैं और कहें, परमेश्वर मुझे स्मरण रखें? महिला, परमेश्वर आपको आशीष दे। युवती, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको, आपको बहुत अच्छा। परमेश्वर आपको आशीष दे। छोटे बालक, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी बहन, मैं उसे चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन जो मेरी दाहिनी ओर है और पीछे, आपको आशीष दे। मैं चाहता हूँ। युवक, परमेश्वर आपको आशीष दे। बहन जो आप यहाँ हैं, आपको, आपको भाई जो इस ओर हैं, प्रभु आपको आशीष दे। पीछे वहाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु मुझे स्मरण रखें। अब स्मरण रखें, आप अपना हाथ मुझे नहीं पकड़वा रहे हैं, उसको ठीक मेरे पीछे। प्रभु आपके हाथ को देखता है, यहाँ तक कि मैं यदि चूक जाऊँ, ये वो देखता है। वो आपका हृदय जानता है, वो जानता है वहाँ क्या धड़क रहा है, वो आपका वास्तविक उद्देश्य जानता है, वो जानता है आपके उद्देश्य की वास्तविकता क्या है। परमेश्वर आपको आशीष दे। भाई कोई और, मैं सारे वचन पर विश्वास करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करें। प्रभु आपके हाथों को देखता है। जी हाँ श्रीमान, यही बात है। ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं समझता। मैं अविश्वासी नहीं बनना चाहता, यद्यपि मैं इन्हें नहीं समझता। जो भी है, मैं इसका विश्वास करना चाहता हूँ। मैं कहने के लिए तैयार हूँ, प्रभु परमेश्वर मैं यहाँ पर हूँ, मैं विश्वास करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय करें। परमेश्वर आपके साथ हो, परमेश्वर आपको आशीषित करे। बहुत सारे हाथ उठे हुए हैं और अब भी उठ रहे हैं। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, क्या इससे सहायता मिलती है? एक बार अपना हाथ उठा करके वास्तविक सही उद्देश्य से और देखें कि आपको कैसा लगता है। आपने ये प्रमाणित किया है कि आपके जीवन में जो आप जानते हैं कुछ है, वहाँ कुछ छोटा सा है। जो भी है, आप वहाँ नहीं होना चाहते। आप अचरज करते हैं कि ये कैसे हो सकेगा, और प्रभु ऐसा ना हो कि मैं यहूदा हूँ, ये ना होने दें कि मैं संदेश में साथ साथ चलूं, ये सोचने का यत्न करते हुए किसी दिन कोई घटी दिखाई पड़ेगी। ओ परमेश्वर, मुझे नहीं, मुझे अपने वचन के साथ साथ बना रहने दे। समझे? यह हो सकता है कि मैं बस ये सोच लूं कि मैं अविश्वासी हूं। ठीक है, यदि तो क्यों नहीं आप बाकी सब ऐसा नहीं कहते? समझे? मैं इनमें से या कोई सा नहीं होना चाहता। मैं विश्वासी होना चाहता हूँ। मैं इस घड़ी में परमेश्वर का वचन देखना चाहता हूँ। मैं इसमें परमेश्वर को देखता हूँ, और प्रभु मुझे इस वचन का भाग बनाए, मुझे इसका भाग बनाए। मैं इसका भाग बनना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। अब आइए हम प्रार्थना करें, और प्रत्येक व्यक्ति आप स्वयं प्रार्थना करें, और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। क्या आप जान गए, एक दिन हम यहाँ एकत्र होने नहीं जा रहे हैं। हो सकता है थोड़े समय के लिए हम में से कुछ ले लिए जाएंगे और हम एक साथ नहीं होंगे। हम में से बहुत से यहाँ हैं, जिसमें हम में से कुछ बूढ़े हो रहे हैं, हम में से कुछ, मैं नहीं जानता, युवा भी मर जाते हैं। हम किसी भी आयु में मर जाते हैं, हमें अलग होना ही है और इस बात को तय होना ही है। और आप वहाँ ऐसे ही नहीं पहुँच सकते। जब आप अपनी सही मनोस्थिति में होते हैं, आपको आना ही है। आप कहते हैं, ठीक है, मरने से थोड़ा सा पहले मैं यदि मैं इसे देख सकूं। नहीं, ऐसा ना करें। तब संभव है आप अपनी सही मनोस्थिति में ना हो। आप दुर्घटना में मारे जा सकते हैं इससे पहले कि आप घर पहुँचे। आप दिल के दौरे से मर सकते हैं। हम नहीं जानते क्या घटित होने जा रहा है। केवल ये परमेश्वर के हाथ में है। मैं विश्वास नहीं करता। यहाँ तक कि मैं लोगों को बाहर देख रहा हूँ, अपने हाथ से खिड़की पकड़े हुए हैं। समझे? जी हाँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं चाहता हूँ, मैं सही होना चाहता हूँ, मैं सही होना चाहता हूँ। अब आओ हम इसे सही करें। अब अभी कोई मतलब नहीं। आप एक बार इसे अपने हृदय की गहराई से तय कर सकते हैं। यदि आप ईमानदारी से कहते हैं, प्रभु यीशु, इसे कोई मतलब नहीं कि क्या कहना है या कोई क्या कहता है। आपका वचन मेरे जीवन में पहला होगा। मैं इसे अपने जीवन में चाहता हूँ। आप वचन हैं, बाइबल ऐसा ही कहती है और मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और मैं धर्मसार और हठमत को जानता हूँ जो इसमें घुसाए गए हैं और ढोंगियों का एक झुंड बना दिया है। प्रभु मुझे ऐसी चीजों से शुद्ध कर जैसा कि ये है और मुझे पूर्णतः तेरा होने दें। मैं अपना हाथ तेरी ओर उठाता हूँ, मैं अपना हृदय तेरी ओर उठाता हूँ, मेरी आवाज़ आपके लिए, मेरी प्रार्थना आपसे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रहकारी हो। और प्रभु मेरे भी हाथ ऊपर हैं, मुझे सारे अविश्वास से शुद्ध करें ओ प्रभु। यद्यपि हो सकता है वो मुझे हनोक के समान चलने की सामर्थ न दे और न मरना पड़े, केवल सांझ का चाल चलन दे और उसके साथ घर जाऊं, परंतु परमेश्वर मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये घटित होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उठा लिए जाना यानी रैप्चर इस अंत के दिन में है और कार्य छोटा होना है। और पिता हमारा कैलेंडर ऐसे ही कहता है 36 वर्ष और कार्य समाप्त हो जाएगा और आपको उसी के मध्य में आना है या फिर कोई भी शरीर नहीं बचेगा। और हमें इतिहासकारों द्वारा बताया गया है और लोग जो ऐसी बातें खोज रहे हैं कि हम इससे बहुत वर्षों आगे चल रहे हैं, बहुत वर्षों आगे। वे हमें कैलेंडरों द्वारा बताते हैं कि हम उससे बहुत आगे हैं। संभव है केवल 15 या 20 वर्ष बचे हों, पिता मैं नहीं जानता, परंतु मैं जानता हूँ यहाँ तक कि हमारे कैलेंडर के अनुसार हम लगभग वहाँ हैं। मैं देखता हूँ जहाँ कोई और आशा नहीं बच सकती, प्रभु वहाँ वो आ रहा है। यदि वे एक दूसरे पर बम छोड़ना आरम्भ कर दें तो प्रभु वहाँ कोई मोर्चा नहीं होगा, वे एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। और प्रभु ये वहाँ टंगे हैं और फिर भी बाइबल कहती है समस्त आकाश और पृथ्वी जलेगी। परमेश्वर मैं देखता हूँ कि घड़ी प्रकट हो रही है। मैं राष्ट्रपति के हत्या के विषय में सोचता हूँ और तब देखता हूँ दूसरा दुष्ट पुरुष बिना जांच परख के आता है और उस पर गोली दागता है, सोची समझी की गई हत्या। ओ परमेश्वर, एक वैसा ही दोषी है जैसा दूसरा, उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। दुष्टता हमारे अपने राष्ट्र में जो कि मसीह राष्ट्र समझा जाता है, प्रभु मसीहों का कितना खराब उदाहरण है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, परमेश्वर हमारी सहायता करें, विशेषकर आपकी कलीसिया की जो कि मसीह की रहस्यमय देह में बपतिस्मा पाए हुए है, जो कि ये आत्मा है जो जिलाती है। आपने कहा और जैसे मनुष्य का पुत्र ऊपर चढ़ गया वैसे ही उसकी देह ऊपर चढ़ जाएगी और वो सिर है, उसकी कलीसिया देह है। ओ परमेश्वर, सिर जो देह की अगुवाई करता है, वचन की प्रधानता मसीह की देह की अगुवाई करे। प्रभु प्रभु वे इस देह के भाग बन जाएं, जिन्होंने अपने हाथ उठा रखे हैं मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं और वे सारे जो टेपों पर उपस्थित हैं, प्रभु परमेश्वर मैं ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं, प्रभु उन्हें अंदर ले आएं। आप उनके हृदय की ओर देखें, आप जानते हैं कि वे क्या हैं, परंतु आपके दास के समान मैं लोगों के लिए बिचवाई करता हूं। प्रभु मैं उनसे प्रेम करता हूं, मैं उनसे प्रेम करता हूं। मैं केवल इसलिए करने का यत्न कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपके प्राधिकार को जो मुझे दिया गया है अनुभव करता हूं। इसलिए पिता मैं यहां अपने सबसे अच्छे यत्न से कर रहा हूं जो कर सकता हूं। प्रभु मेरी निर्बल गलतियों को क्षमा करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे सामर्थ्य प्रदान करेंगे कि मैं लोगों को और स्पष्टता से व्याख्या करने के योग्य हूं। अब आज रात्रि इस आराधनालय में हमारे साथ हूं। प्रभु इन लोगों की ओर नीचे देखें जिन्होंने अपने हाथ आराधनालय में उठा रखे हैं। प्रभु मुझे जांचें और मुझे परखें, यदि मुझमें कोई गलती हो तो पिता मुझे शुद्ध करें, इसे प्रदान करें, इस कलीसिया को शुद्ध करें। प्रभु हम सबको शुद्ध करें ताकि वचन हमारे मध्य में देहधारी हो और आज के दिन संसार को मालूम हो जाए। पिता इसे ग्रहण करें क्योंकि इसे मैं अपने साथ और इस मूल पाठ को समर्पित करता हूं और इस सभा के साथ और तेरे वचन के साथ और हमारे प्राणों के उद्धार की प्रतिज्ञा के साथ यीशु मसीह के नाम में प्रदान करें। प्रभु परमेश्वर की सामर्थ हम पर आए और हमारा अभिषेक करे। पास्टर से लेकर जेनिटर तक हर व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है, पवित्र आत्मा आए और हमारे हृदयों में अपना स्थान ले और परमेश्वर के प्रत्येक प्रतिज्ञा को लें और हम पर प्रकट करें कि तेरा वचन सत्य है। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना मांगता हूँ। और जबकि हमारे सिर झुके हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि ऑर्गन बजाने वाली यदि हमें इस गाने का स्वर दें, उसकी आवाज मैं सुनता हूँ, वहाँ जहाँ मुझे ले चले मैं इसके पीछे चलूंगा, जहाँ वो मुझे ले चलेगा मैं पीछे चलूंगा। वो क्या है? वचन।
I say, you're calling. I can't hear my say.
अब अपने हर धर्म का इनकार करें और आदि आदि बातों का. वो जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले, वचन कहता है वो मेरा चेला होने योग्य नहीं. वापस बाइबल पर, जहां वो आपकी अगुवाई करेगा. यदि ये कुंड में उसके नाम के अंदर, यदि ये वेदी पर अपनी लज्जा को छोड़कर सारी जगह उस न्याय में से जो कि अब है मैं चलूंगा. आप किसकी ओर हैं? आप बाइबल के अंदर अपने प्रतिबिंब में क्या देखते हैं? परमेश्वर के दर्पण में. यदि मैं अभी वचन के द्वारा जांचा जा रहा हूँ, मैं वचन के साथ जाऊंगा. इससे कोई मतलब नहीं कि कितनी कीमत चुकानी पड़े. मैं परमेश्वर के न्याय में से होकर निकल रहा हूँ. यदि मुझे कोई एक स्थान लेना पड़े, मुझे विश्वासी बनाए ठीक वचन पर.
Think it over real close now.
क्योंकि जहां वो मुझे ले चले, अब इस पर सोचें बहुत ध्यान से.